मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قرآن مجید کی ایک آیت تلاوت کی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے یہ سورہ بقرہ کی پہلی آیت ہے جہاں سے قرآن کی ابتدا ہو رہی ہے قرآن مجید کیوں ضروری ہے ہماری زندگی کے لیے آپ یہاں جاپان میں دیکھ رہے ہیں کہ یہاں دنیا کی ہر نعمت ہے ہر سہولت ہے لا قانونیت نہیں ہے کرپٹ حکمران نہیں ہے چوریاں نہیں ہیں میں بار بار بیان میں مثال دیتا ہوں بھائی میڈ ان جاپان کا مطلب اب مزید تحقیق کی ضرورت نہیں سوال پیدا ہوتا ہے جب جاپان میں سب کچھ ہے تو ہمیں قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے پاکستان میں ہم کہہ سکتے ہیں بھئی تم قرآن پڑھو تمہیں جاپان کا ویزا مل جائے گا تو ہو سکتا ہے پڑھ لے وہ کہ شاید یہ والی سورت پڑھنے سے جاپان کا ویزا مل جاتا ہے تو وہ والی سورت کو پڑھنا شروع کرے گا لیکن جن کو پہلے سے ویزا ملا ہوا ہے جو یہاں کے نیشنل ہو چکے ہیں یہی پلے بڑے یہی ان کا کاروبار ہے یہی اچھی جاب ہے تو ان کو قرآن پڑھنے کی ضرورت کیا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات بھائی جس چیز کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ انسان اس کو کیوں پڑھے ہمارے ایک دوست تھے پاکستان میں تھے کیا ہیں ابھی بھی انہوں نے ان سے کسی نے کہا کہ آپ یہاں کی مقامی زبان سیکھیں کوئی علاقے کی خاص زبان تھی بہت چھوٹے ایریے کی زبان تھی وہ انہوں نے کہا میں اتنی محنت کر کے زبان کیوں سیکھوں انہوں نے کہا چونکہ یہ لوکل زبان ہے انہوں نے کہا جب میرا لوکل زبان کے بغیر بھی گزارا ہو رہا ہے اور ہر شخص یہاں اردو پشتو جو کے پی کے میں سب پشتو سمجھتے ہیں اور سندھ میں اور بلوچستان میں یا پورے ملک میں سب اردو سمجھتے ہیں تو یا سندھ میں سب اندرون سندھ میں سب سندھی سمجھ رہے ہیں تو جب میرا اس سے گزارا ہو رہا ہے تو میں اتنی چھوٹی سی زبان کیوں سیکھوں اتنی محنت کر کے جب میں سیکھوں گا تو پھر بڑی زبان سیکھوں میں تو دنیا میں کوئی بھی شخص کوئی ایسا کام جس کی سوسائٹی کو ضرورت نہ ہو وہ اگر کرنا شروع کر دے تو عقل مند سمجھا جاتا ہے یا بے وقوف سمجھا جاتا ہے اب بتائیں نا مشکل کام جس کا کوئی فائدہ نہ ہو وہ اگر آپ کرنا شروع کر دیں تو یہ عقل مندی ہے یا بے وقوفی ہے تو سب لوگ بولے زبان سے نا تاکہ جب وہاں بھی لوگ پیچھے بیٹھے ہوئے تو تاکہ مجھے پتا چلے میرے ساتھ بیان میں شریک ہے اس سے آپ ایکٹیو بھی رہیں گے اچھا ہمارے جو لوکل لوگ ہیں نا میں جب جیپنیز کو دیکھ رہا ہوں ایسے باریک باریک دبلے دبلے لمبے لمبے ہمارے والے ویسے ہی ہیں جیسے وہاں تھے یعنی ہمارے والے جو ہیں جیسے وہاں تھے بالکل ایز اٹ از یہاں پر کوئی چینجنگ نہیں آئی ہے ان میں بیس بیس تیس تیس سال سے بھی ویسے کے ویسے ہی تو یہ لمحہ فکری ہے تو میں کر رہا تھا کہ ایک پتھر رکھا ہوا ہے جس کا اٹھانا آپ کے لیے بہت زیادہ مشکل ہے کوئی شخص آپ کے پاس آ کے کہتا ہے کہ اس پتھر کو یہاں سے اٹھا کے یہاں کر دو آپ کہو گے بھائی اگر یہ راستے میں ہوتا تو میں اٹھا دیتا تاکہ راستہ کلیئر ہو جاتا یہ تو نہ راستے میں پڑا ہوا ہے نہ کسی کو تکلیف دے رہا ہے آپ اگر کہتے ہیں کہ اس کو اٹھا کے ٹرک میں رکھ دو گاڑی میں لوڈ کر دو تو میں کہتا شاید گھر میں کسی کام سے لے جا رہے ہو تو میں اتنی محنت کر کے زور لگا کے یہ پتھر اٹھاؤں گا اور یہاں سے اٹھا کے یہاں رکھوں گا تو آپ کائنڈلی مجھے بتا دیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے تو وہ جواب میں یہ کہے کہ اس کا فی الحال میرے ذہن میں کوئی فائدہ ہے نہیں. تو آپ وہ پتھر اٹھانے کی محنت کرو گے؟ اور اگر وہ بار بار یہی بات ریپیٹ کرتا رہے کہ نہیں اٹھانا ہے, کوئی فائدہ تو نہیں ہے لیکن اٹھانا ہے, تو آپ اٹھاؤ گے لیکن اس کا سر پھاڑنے کے لیے اٹھاؤ گے. آپ یار میری جان چھوڑے, ایک فائدہ تو میرے ذہن میں آ گیا کہ بھائی اٹھاؤں گا اور تیرے سر پہ ماروں گا یہ پتھر. تو آپ لوگ جو ترقی یافتہ کنٹریز میں ہیں نا, یہاں جب آپ آ کے دیکھتے ہیں کہ یہاں کھانا بھی ہے, پینا بھی ہے, صحت بھی ہے, کرپشن, پاکستان میں تو بیسیوں مسائل ہیں نا. آپ بھی وزٹ کرتے ہوں گے پاکستان, صبح سے لے کے دوپہر, دوپہر سے لے کے شام تک باتیں کیا ہوتی ہیں ہماری. ایک دور میں یاد ہے جب لوڈ شیڈنگ بہت زیادہ ہو رہی تھی تو ایک ہی بات سب کے زبان پہ تھی, بس بجلی آنے والی ہے, بجلی جانے والی ہے, بتی آ گئی, بتی چلی گئی, بتی کب آئے گی, بتی کب جائے گی, بتی آ گئی ہے پتہ نہیں کب چلی جائے گی. یہ 2011 کی بات کر رہا ہوں میں, 2006 اور 7 کی. ہاں اس میں 24 گھنٹے یہی کچھ ہماری زبان پہ ہوتا تھا. تو آپ کے تو یہ مسائل ہی نہیں ہے, مجھے تو سمجھ میں نہیں آ رہا آپ زندگی گزارتے کیسے ہیں یہاں پہ, باتیں کیا کرتے ہیں بیٹھ کے. ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے باتیں کرنے کے لیے, پی ٹی آئی کے بارے میں, مسلم لیگ کے بارے میں, پیپلز پارٹی کے بارے میں, وہ کھا گیا, وہ ایماندار ہے, وہ بے ایمان ہے, فوج ایسی ہے, اسٹیبلشمنٹ ویسی ہے, تو اب بہت کچھ ہے ہمارے پاس بات چیت کے لیے. میں آپ پہ حیران ہوں, آپ سوچ رہا ہوں کبھی میں ایسے چپکے سے بھیس بدل کے بیٹھ جاؤں کہ باتیں کیا ہو رہی ہیں یہاں پہ, میں دیکھوں لوگ چائے کے دوران بات کیا کرتے ہیں. یہاں تو کچھ بات کرنے کے لیے ہے ہی نہیں, سب کچھ سیٹ چل رہا ہے. تو جس سوسائٹی میں سب کچھ سیٹ چل رہا ہو, بالکل ہر چیز اوکے کی رپورٹ ہو, سوال پیدا ہوتا ہے وہاں آپ کو قرآن پڑھنے کی, قرآن سیکھنے کی, مولویوں کو بلا کے مولویوں کا بیان سننے کی کیا ضرورت ہے؟ اب سوال سمجھ میں آیا بھائی, ہم یہاں کیا کریں گے, مہنگائی ختم کر دیں گے یہاں کے, یہاں کیا ہو جائے گا, ہمارے آنے سے کیا فائدہ ہو گیا؟ آپ بولو یار مولوی صاحب ہم خوش ہیں یہاں پہ, آپ لوگ بلکہ خطرہ ہے کہ وہاں سے غربت نہ لے کے آ جاؤ یہاں پہ آپ. تو کیوں بلایا آپ نے ہمیں سننے کے لیے, کیوں آپ ہمارے سامنے بیٹھ کے بات سن رہے ہو, اور ہمیں ان کو گائیڈ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ دنیا نے ان لوگوں کو امام بنایا ہوا ہے ہر چیز میں, تو ہم کیوں آ کے آپ کو گائیڈ کریں پاکستان سے آ کے, ہم کیوں آپ کو آ کے چیزیں سمجھائیں کہ بھائی ایسے چلو ایسے نہیں چلو؟ یہ ایک لبرل اور سیکولر لوگوں کے ذہن میں ایک بہت بڑا اشکال ہوتا ہے. اور میں میرا بھی جاپان پہ جو بیان تھا اس پہ کچھ لوگوں کے کمنٹس آئے ہوئے تھے کہ مولویوں کا کیا کام ہے جاپان میں, یہ نیچے کمنٹس آئے ہوئے تھے. یونیورسٹی میں بیان ہوتا ہے نا پاکستان میں کسی بڑی یونیورسٹی میں, کچھ لوگوں کے کمنٹس ہوتے ہیں کہ یہ مولویوں کو یونیورسٹی میں کیوں گھسایا ہے آپ نے, ان کا کیا کام ہے؟ اور اس طرح کی نا ہر جگہ. کل بھی میں کمنٹس دیکھ رہا تھا کسی بیان پہ, نیچے ایسے کمنٹس تھے کسی نے کہ یہ مولوی لوگوں کا کیا کام ہے, اچھی بھلی ان لوگوں کی زندگی گزر رہی ہے, خوشی ہمیں یہاں آ کے بھی یہ لڑائیں گے لوگوں کو, فتوے لگائیں گے وہ کافر وہ مسلمان, فلاں کو طلاق ہو گئی ہے فلاں کا طلاق نہیں ہوئی ہے, ٹھیک ہے نا. اور جو عاملوں کے چکر میں پھنس گئے تو پھر جن چڑیل بھوت. اور آپ نے کسی جاپانی پہ جن چڑھتے ہوئے دیکھا؟ نہیں ہے. لیکن آپ پاکستان سے بلا لو کسی عامل کو, روحانی علاج والے کو, بزرگ کو جو روحانی علاج کرتا ہو, آپ دیکھو ہر جاپانی پہ جن بھی ہوگا چڑیل بھی اور بھوت بھی, یہ میں آپ کو بتا دوں. اس لیے عاملوں کو نہیں بلاؤ, خدا کا واسطہ کبھی بھی روحانی عاملوں کو لفٹ نہ کراؤ, نہ آپ پہ کبھی یہاں جادو ہوگا انشاءاللہ, نہ کبھی جن ہوگا, نہ کوئی بھوت نہ کوئی چڑیل. جس دن آپ نے کسی بابا کو بلا لیا نا دم درود کے لیے, گئے کام سے بس. تو خیر, تو میں یہ عرض کر رہا تھا بھائی آپ کو سوال ہوگا کہ بھائی اتنا اچھا ہمارا ماحول ہے, سکون سے ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے, تو مولوی صاحب آپ کا کیا کام ہے یہاں پہ یار, کیا کام ہے یہاں؟ تو دیکھو ہمارا کیا کام ہے, ہم آپ کو بتانے کے لیے آئے ہیں کہ یہ جو دین ہے نا, جو اسلام ہے, یہ قرآن ہے, یہ ہمارا ذاتی نہیں ہے, نہ میرا ہے, نہ میری لکھی ہوئی کتاب ہے قرآن کریم, نہ آپ کے قرآن کو ماننے سے, قرآن پہ چلنے سے میری ذات کو کوئی فائدہ ہے. اکثر بیانات میں لوگوں کو چار شادیوں کی ترغیب دیتا ہوں نا, تو لوگ بڑا اعتراض کرتے ہیں یہ مولوی کیوں اس چیز کے پیچھے پڑ گیا ہے. تو میں لوگوں سے کہتا ہوں میرا کیا فائدہ ہے یار اس میں, اگر تمہاری دو شادیاں ہو جائیں کوئی فائدہ ہے میرا؟ کتنی کامن سینس کی بات ہے نا کہ ایک آدمی डंडा लेके लोगों के पीछे पड़ा हुआ है, हर बयान में इसका तस्करा कर रहा है, या तो उसका कोई मफाद होता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुशरिकीन मक्का को बुत परस्ती के खिलाफ दावत दी और पूरी कौम आपके अगेंस्ट हो गई, तो अल्लाह ने पैगंबर से फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि जो मैं तुम्हें तौहीद की दावत दे रहा हूं इसमें मेरा जाती कोई फायदा नहीं है। मा असअलुकुम अलैही मिन अजरिन, इस पे मैं कोई अजर का मुतालबा नहीं करता, ना मुझे ओहदा चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए, ये तुम्हारे फायदे के लिए कर रहा हूं मैं। तो जब किसी की दावत में उस दावत देने वाले का कोई फायदा नहीं है तो उसकी दावत को गौर से सुनना चाहिए। देखें यहां हलाल फूड वाले बैठे हुए हैं माशाल्लाह, क्या नाम है आपका? रमजान सिद्दीकी साहब, यहां आपको हलाल के फायदे बताना शुरू कर दें कि हलाल गोश्त खाने में ये सवाब मिलेगा, आपको जन्नत में जाओगे, हराम खाने से जहन्नम में जाओगे। आपके जहन में आ सकता है भाई, लगता है ये क्या नाम बताया, सॉरी, रमजान सिद्दीकी साहब मंजन बेच रहे हैं। ख्याल होगा ना दिल में कि भाई अभी आजकल बड़े हलाल हलाल कर रहे हैं, हराम से बचा रहे हैं, असल में चलाना क्या है, अपना होटल बिजनेस। एक इमाम साहब ने हज वैकेंसी खोली, ट्रैवल एजेंसी, सॉरी वैकेंसी कह रहा हूं, हज ट्रैवल एजेंसी। जब वो ट्रैवल एजेंसी उन्होंने खोली अपना उनका बिजनेस, तो हर जुम्मे को उनका बयान हज के फजाइल पर, ठीक है ना। और जैसे ही हज का सीजन आने वाला हो बहुत जज्बाती बयान शुरू हो जाते थे उनके, हज का बड़े फजाइल है, फिर आखिर में कौन कौन हज करना चाहता है, पीछे बंदा बिठाया हुआ था, जो जो चाहे उसका नाम लिख ले, फिर उसको बताना भाई हम लोग भी करवाते हैं। उन पे तो शक हो सकता है भाई, ये अगर हज के इतने फजाइल बयान कर रहे हैं तो इखलास भी हो सकता है, लेकिन इस बात का भी इम्कान है कि मकसद क्या है भाई, अपना बिजनेस। तो हमजा नाम है, रमजान है क्या नाम, एक तो रमजान याद ना, अब याद रहेगा इंशाल्लाह। तो रमजान भाई अगर यहां जो है, अच्छा मैं जब ये बात कर रहा हूं ये भी लोगों के जहन में आएगा शायद रमजान भाई से मैंने कोई कमीशन खाया हुआ है। मैंने कोई कमीशन नहीं लिया भाई, ना मेरा कोई इरादा है, वैसे ही मिसाल आ गई। तो ये बदगुमानी हो सकती है कि रमजान भाई जब यहां फजाइल बताएं हलाल गोश्त के, आप कह सकते हो यार लगता है कि कोई स्टॉक में माल ज्यादा जमा हो गया है, अब वो पहनाना है कस्टमर से। तो मैं लोगों से कहता हूं मैं चार शादियों की तरगीब देता हूं, मेरा तके का फायदा इसमें नहीं है, वही फायदा मेरी तो हो गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और नहीं भी हुई होती तो मैं बयान नहीं भी करता तो भी हो जाती, नहीं होनी होती तो नहीं होती, होनी होती तो इसका बयान से ताल्लुक नहीं है। तो मैं ये इसलिए कहता हूं ताकि लोग हमारी दावत को सीरियस लें कि भाई हम आपके फायदे के लिए, कौम के फायदे के लिए ये बातें कर रहे हैं, अपनी जात के लिए ये बातें नहीं कर रहे। तो मैं जब आपके सामने बयान कर रहा हूं या उलमा जब आपको इसको बताते हैं कि कुरान और सुन्नत पे चलो, इस्लाम को फॉलो करो, इसमें उलमा का कोई फायदा नहीं है, दुनिया का कोई फायदा नहीं है। अभी पता है इनको, ये जो इरशाद भाई हैं, ये मुझे कह रहे थे कि बयान खत्म करते हैं बस अब घूमते हैं जापान में। मैंने कहा नहीं, इतनी दूर जब आए हैं, हालांकि मुझे बयान करने से ना दिमाग बहुत बोझ आता है मेरे ऊपर, वहां भी कराची में जिस दिन बयान की छुट्टी हो ना मुझे ऐसा सुकून मिलता है कि बड़ा मजा आएगा। तो मुझे कोई शौक नहीं है मिंबर पे बैठ के, क्योंकि ये काम तो हम कर रहे हैं ना, जो काम का आदमी आदी हो जाता है वैसे भी उसमें उसको वो सुरूर थोड़ी आता है, उसमें वो तो आदत हो जाती है उसकी। तो मैंने कहा नहीं भाई, इतनी दूर आए हैं और गैर मुस्लिम कंट्री है, यहां पे अगर अल्लाह का पैगाम लोगों तक नहीं पहुंचाने की कोशिश की तो अल्लाह को क्या जवाब दूंगा मैं। तो घूमेंगे भी फिरेंगे भी, लेकिन असल काम क्या है भाई, असल तो दावत को ध्यान करना है, दावत देनी है लोगों को। शायद हमारी वजह से किसी को अल्लाह सीधे रास्ते पे चला दें, कोई कुफर से बच जाए। तो मैं अपनी बात को दोबारा वहीं से शुरू करता हूं जहां से मैंने छोड़ा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि भाई क्या फायदा है इसमें, क्यों हम कुरान पे चलें, क्यों हम इस्लाम को फॉलो करें, क्यों हम अल्लाह रसूल की बात को सुने। ये जापानी लोग तो कुरान को नहीं मानते, ना ये कुरान की तिलावत करते हैं, ना इनकी जिंदगी में रमजान है, ना इनकी जिंदगी में नमाज है, ना जकात है, उसके बावजूद ये कामयाब लोग हैं। तो हमने अगर कुरान और सुन्नत को फॉलो नहीं किया तो कौन सी कयामत आ जाएगी? अब सवाल समझ में आया कि नहीं आया भाई? इसी बात को समझाने के लिए ना अल्लाह ताला ने ہزاروں لاکھوں پیغمبر بھیجے ہیں اس بات کو سمجھانے کہ تمہارے لیے سب سے زیادہ ضروری اللہ کی وہ ہدایت ہے جو اللہ نے آسمان سے اپنے بندوں کے لیے نازل کی ہے. تمہیں روٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تمہیں جاپان کی نیشنلٹی کی اتنی ضرورت نہیں ہے, تمہیں معاشی ترقی کی اتنی ضرورت نہیں ہے. تمہیں اگر سب سے زیادہ ضرورت ہے تو اس ہدایت کی ضرورت ہے جو اللہ نے آسمان سے نازل کی, جس کے برحق ہونے میں دو رائے نہیں ہو سکتی. اس ہدایت پہ جب تک تم نہیں چلو گے اس وقت تک نہ تم دنیا میں کامیاب ہو سکتے ہو نہ تم آخرت میں کامیاب ہو سکتے ہو. سب سے زیادہ ضرورت ہے اس کی. پھر سوال وہیں کا وہیں آگے کھڑا ہو جائے گا, بھائی یہ کیسی باتیں کر رہا ہے اللہ تعالیٰ اور کیسی باتیں کر رہا ہے قرآن, کیوں ضرورت ہے بھائی؟ اگر ضرورت ہوتی تو یہ لوگ چلتے, یہ تو نہیں چل رہے, ان کی ساری ضرورتیں بولو نا پوری ہو رہی ہیں, ان کی تو ساری ضرورتیں پوری ہو رہی ہیں, خوشحال زندگی ہے, وزن بھی ان کی مینٹین, اور ہمارے یہاں قرآن و سنت کے نام پہ تیجا چالیسواں کھا کے ہم گول ہوتے جا رہے ہیں. بالکل وہ ہے نا, ہم فراق یار میں گھل گھل کے ہاتھی ہو گئے, اتنے گھلے اتنے گھلے رستم کے ساتھی ہو گئے. فراق یار کا مطلب یار کی جدائی میں, پہلے زمانے میں یار کی جدائی میں اللہ کی محبت میں لوگ گھل گھل کے کیا ہوتے تھے؟ دبلے. اب ہم الٹے ہوتے جا رہے ہیں, جتنا مذہب کو فالو کرتے ہیں ہمارا ویٹ بڑھنا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھو یہ جو اشکال پیدا ہو رہا ہے نا آپ کو کہ کامیابی اگر قرآن و سنت پر اللہ اس کی باتوں پر عمل کرنے میں ہوتی تو یہ لوگ زیادہ کامیاب ہوتے. یہ سوال اس لیے آپ کے ذہن میں آ رہا ہے کہ کامیابی کی ڈیفینیشن آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ غلط چیز کو کامیابی سمجھ بیٹھے ہو. آپ کامیابی کس چیز کو سمجھ بیٹھے ہو؟ غلط چیز کو. اللہ تعالیٰ یہ بات بھی آپ کے دماغ سے نکالتے ہیں کہ جس چیز کو تم کامیابی سمجھ رہے ہو وہ حقیقت میں کامیابی نہیں ہے. یہ دنیا ہے مسافر خانہ, حالت سفر میں آپ کو اگر بزنس کلاس مل جائے اس کو کامیابی نہیں کہتے. ایک پھانسی کے مجرم کو بزنس کلاس میں بٹھا کے ٹرین میں لے جایا جا رہا ہے اور آگے پشاور میں اتار کے اس کو پھانسی کے پھندے پہ لٹکایا جائے گا تو کوئی شخص آ کے اس سے کہے تو کامیاب ہے, اور ایک اکانومی کلاس میں دروازے پہ لٹک کے سفر کر رہا ہے اور پشاور اسٹیشن پہ پہنچنے کے بعد پورے پروٹوکول کے ساتھ اس کا استقبال ہونے والا ہے, وہ غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا. میرے ساتھ تو ایسا ہوا ہے, میں غلطی سے غلط ٹرین میں بیٹھ گیا تھا تو پوری ٹرین میں ہی میں ایسے ہی گیا ہوں. صحیح ہے نا؟ اس نے کہا مجھے وہ جو نہیں ہوتا جو ٹی ٹی والا, اس نے بولا کہ اگلے اسٹیشن پہ آپ کو آپ کی اوریجنل ٹرین مل جائے گی. تو اگلے کے چکر میں اسی طرح پہنچ گئے ہم. لیکن جب میں لاہور پہنچا ہوں تو استقبال کے لیے بیسیوں لوگ کھڑے ہوئے تھے. کبھی بھی موجودہ حالت کو دیکھ کر کامیابی یا ناکامی کا معیار متعین نہیں کیا جاتا, ہمیشہ منزل کو دیکھا جاتا ہے, فیوچر کو دیکھا جاتا ہے. جس کا فیوچر اچھا ہے وہ کامیاب ہے, جس کا فیوچر برا ہے وہ ناکام ہے. اب یہ فیوچر کیا ہے بھائی؟ آپ کہہ سکتے ہیں بھائی فیوچر کا تو کسی کو کچھ بھی پتا نہیں ہے, ہم تو ابھی حالت دیکھیں گے نا. آپ کے ہاں کوئی بچی کے لیے کوئی بندہ آیا رشتہ لے کے, آپ کہتے ہیں بیٹے کیا کماتے ہو؟ وہ کہتے ہیں ابھی تو کچھ نہیں کما رہا, فیوچر میں 1 کروڑ روپے کماؤں گا. دوسرا آیا بیٹا کیا کماتے ہو؟ 1 کروڑ روپے کما رہا ہوں, فیوچر کا کچھ پتا نہیں ہے. کس کو دو گے؟ جو کما رہا ہے بھائی. کیا خیال ہے؟ یہاں ایک سیکولر اور لبرل لوگ دماغ میں ایک وسوسہ ڈالتے ہیں, ابے فیوچر کس نے دیکھا ہے بھائی؟ یہ مولوی لوگ فیوچر کی باتیں کر کر کے تمہاری 4 شادیاں کرا دیتے ہیں اور تمہیں جنت کے لالچ دے کے تمہارا بیڑا غرق کرا دیتے ہیں. نہ دنیا کے رہتے اور مرنا تو سب نے ہے, تو فیوچر کا کیا پتا یار کیا ہوگا؟ حال کو دیکھو, ابھی کون خوشحال ہے اور کون بدحال ہے اس کو دیکھو, فیوچر کی ایسی کی تیسی. پھر یہی مثال ہو سکتا ہے دے دیں بھائی, ایک ابھی کما رہا ہے یار. اب میں کہوں پاکستانیوں کا فیوچر بہت اچھا ہے لہذا ہم جاپانیوں سے زیادہ کامیاب ہیں, کوئی مان لے گا اس بات کو؟ بولے گا پتہ نہیں اس سے بھی بدتر نہ ہو جائے جو ابھی چل رہا ہے. ہو سکتا ہے اس سے, اللہ کرے اس سے اچھا ہو جائے, امید پہ دنیا قائم ہے. حال دیکھا جاتا ہے بھائی, तो ये बात बिल्कुल दुरुस्त है कि फ्यूचर का क्या पता। लेकिन वही हम पुरानी मिसाल की तरफ आते हैं, जहां फ्यूचर का यकीन हो और उस यकीन पे दलाइल कायम हो कि जिसका हाल अच्छा है, अगर उसने अल्लाह को नाराज करके जिंदगी गुजारी, दलाइल से ये बात साबित हो जाए कि इसका फ्यूचर अच्छा नहीं है। देखो, कोर्ट ने फैसला कर दिया कि इसको सजाए मौत है, अब उसके बारे में कोई कह सकता है कि इसके फ्यूचर के बारे में हम कंफर्म नहीं है, क्योंकि 1 करोड़ रुपए कमा रहा है ना। ये वही दो बंदों की मिसाल दे देता हूं जो रिश्ता लेने के लिए आए थे। एक कमा रहा है 1 करोड़ अभी, और एक कह रहा है कुछ पता नहीं भाई, हो सकता है फ्यूचर में मैं 1 करोड़ रुपए कमा लूं, मेरे पास डिग्रियां हैं, सनद है, एजुकेशन है, फ्यूचर में कमा सकता हूं, लेकिन हाजिर सर्विस नहीं हूं अभी मैं। आप दोगे उसको जो अभी कमा रहा है, लेकिन वो जो था ना जो अभी नहीं कमा रहा, उसने डॉक्यूमेंट्स निकाल के दिखाए, कोर्ट का फैसला आपके सामने रख दिया कि ये जो कमा रहा है ना सर, इसको सजाए मौत सुनाई जा चुकी है, ये कोर्ट का फैसला है लिखा हुआ। समझ में आ रही है बात? ये देख लें, ये अखबार का साशा है, इसमें इसका नाम है, अखबार में शाया हुआ है कि अगले साल इसको लटका दिया जाएगा। अब आप इसके हाल को देख के इसको कामयाब मानोगे? अब आप कहोगे चूंकि हाल बहुत अच्छा है, फ्यूचर का तो किसी का कोई पता नहीं। नहीं भाई, किसी का कोई पता नहीं, इसका पता है कि ये लटकेगा, ठीक है ना, और इसकी डिग्रियां देख के पता है कि ये यकीनन कल 1 करोड़ रुपए कमाएगा। ये तो जिनको अल्लाह की आयात पे यकीन है, जब अल्लाह ने ये बात कह दी कुरान मजीद में कि ये दुनिया मुसाफिर खाना है, ये दुनिया रहने की जगह नहीं है, कुरान क्या कहता है, कामयाबी का मयार किया है। अब अल्लाह की बात पे हम यकीन कैसे करें, वो मैं उसकी तरफ आता हूं। अभी आप कह सकते हैं कि पता नहीं अल्लाह ने कहा भी है कि नहीं कहा, क्या ख्याल है भाई? ये तो ईसाई कहते हैं कि तौरात ने, इंजील ने सच कहा, यहूदी कहते हैं तौरात ने सच कहा, और हिंदू अपनी किताबों को पेश करते हैं, सब निस्बत कोई भगवान की तरफ कर रहा है, कोई गॉड की तरफ कर रहा है, कोई अल्लाह की तरफ कर रहा है। हो सकता है सारे सियासी नारे हो ये, तो हम कंपेयर करते हैं भाई, ये अल्लाह की बात और बाकी किताबों की बातों में कितना फर्क है। कुरान क्या कह रहा है, कामयाबी का मैयार किया है, फमन जुहजिहा अनिन नार व उदखिलल जन्नता फकद फाज। अल्लाह फरमाते हैं जिसको जहन्नम की आग से बचा लिया गया और जिसको हमेशा की जन्नत में दाखिल कर दिया गया, वो क्या है, तहकीक, वो कामयाब हो गया। तो अल्लाह के हां ये कामयाबी नाकामी की 2 टके की वैल्यू बोला करे ना यार जबान से। मैं बयान नहीं करने आया, मैं तो आपको मोटिवेट करने आया हूं। बयान तो उलमा से सुनते हैं आप लोग, किताबों में सब कुछ लिखा हुआ है, जबान से बोलेंगे तो सबक याद होगा ना। दुनिया के लिए 2 टके का लफ्ज याद कर ले, अभी तो वैसे टके की वैल्यू बढ़ गई है। बांग्लादेश की करेंसी बहुत कम थी एक जमाने में ना, तो उस वक्त कहते थे 2 टके का आदमी नहीं है तू, जब किसी को नीचा दिखाना होता था। अब तो 2 टका डॉलर के बराबर होता जा रहा है वो, अब तो वो कहेगा शुक्रिया आपने मुझे 2 टके का कहा, वो तो कहेगा बहुत शुक्रिया आपको। अच्छा, ये बांग्लादेश के बैठे तो वो क्या कहेगा, भाई बहुत शुक्रिया आपने मुझे क्या कहा, 2 टके का। लेकिन चूंकि उर्फ में टका लफ्ज अच्छा लगता है, इसलिए मैं अभी फिलहाल टका ही चला रहा हूं। सही, फिलहाल मैं क्या चला रहा हूं मार्केट में, टका चला रहा। तो ये लफ्ज जबान से कहा करो कि अल्लाह की नजर में इस दुनिया की वैल्यू 2 टके की नहीं है। क्यों नहीं है भाई? देखो, ये जो हाल की कामयाबी है ना, ये वो कामयाबी है जो सफर में मिलती है इंसान को। मैंने मिसाल दी ना बिजनेस क्लास की, है तो सफर, आहिस्ता आहिस्ता मंजिल करीब आ रही है। आप आखिरत पर यकीन नहीं भी रखते, मौत पे तो सबका यकीन है या नहीं है? तो कितने दिन की जिंदगी है भाई ये, जहां आप लाइफ को एंजॉय कर लोगे, और उस जिंदगी टोटल जिंदगी देखो, फिर उस जिंदगी में बचपना और बुढ़ापा निकाल दो, तो बुढ़ापे में एंजॉय नहीं होता, एंजॉय के अलावा सब कुछ बुढ़ापे में मिलता है। आप बादाम रखे होंगे, चबाने के लिए दांत नहीं होंगे, हसीन मनाजिर होंगे देखने के लिए, नजर देखने में साथ, उधर देखने के लिए अलग चश्मा, करीब देखने के लिए अलग चश्मा, ऐसा होता है कि नहीं होता? और थोड़े दिनों के बाद चश्मे से भी नजर नहीं आता इंसान, सबके साथ होता है। फिर कोई हसीन मंजर नजर आया तो वहां चलने के लिए घुटनों में जो ताकत चाहिए वो ताकत खत्म, सबके जापानियों के भी खत्म होती है, थोड़ा देर से होती है, देर से बूढ़े होते हैं, अंदर जल्दी हो जाते हैं, होते तो है ना। तो ये इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है, इतनी जल्दी दुनिया खत्म होती है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मिसाल दी है। मैं मिसाल से पहले एक और मिसाल से बात समझाता हूं। میں اکثر بیانات میں ایک مثال دیتا ہوں بھائی، یہ مثال کراچی میں بہت اچھی طرح پنجاب اور کراچی میں سمجھ میں آئے گی. ایک بندہ آپ کے پاس لینڈ کروزر لے کر آیا اور کہتا ہے میں آپ کو یہ 50,000 روپے کی بیچ رہا ہوں، 0 میٹر لینڈ کروزر. آپ تو خوشی سے کیا ہو جاؤ گے؟ بے ہوش. یار 50,000، 2 ٹکے کی نہیں ہے یہ گاڑی، اتنی زبردست گاڑی 2 ٹکے میں مل رہی ہے، خوش ہو جاؤ گے نا آپ. آپ چیک کرو گے اس کی سیٹیں کیسی ہیں، اس کا اسٹیئرنگ کیسا ہے، کلچ، گیئر، سب. آپ کو شک ہوگا یار کوئی تو نہیں، کوئی 2 نمبر چیز لگا کے لنڈے کا مال لگایا ہوا اس نے. اس نے ہر لحاظ سے آپ چیک کر رہے ہو بھائی سب کچھ کیا ہے اوکے. آپ پاگل ہو جاؤ گے یار، تو بڑی ٹائٹ چیز ہے. آپ فوراً سودا پکا کرو گے. آپ کے پاس اگر 50,000 نہیں ہے نا، آپ کسی سے ادھار لو گے. اچانک اس نے آپ کے کان میں ایک بات کہا کہ یار اس میں ایک چھوٹا سا فالٹ ہے، بہت ہی معمولی سا. سیٹیں اوریجنل ہیں، جاپانی سیٹیں، اسٹیئرنگ بھی کیا ہے جاپانی ہے، گاڑی فل جاپانی ہے، چھوٹا سا فالٹ ہے. آپ کو ایک دم آپ جذباتی ہو جاؤ گے، بھائی جلدی بتا. کہ بھائی یہ نمبر پلیٹ جعلی ہے. یہ کیا ہے نمبر پلیٹ؟ آپ پتہ کیا کرو گے؟ آپ بولو گے بھائی 50,000 روپے میرے سے لے لے اور میری جان بولو چھوڑ. کیونکہ وجہ کیا ہے اس کی؟ وجہ اس کی ہے کہ 50,000 روپے گاڑی لے کے جب آپ نکلو گے، ہر پولیس والے سے آپ کو کیا لگے گا؟ ڈر. یار اس نے ابھی مجھے ہاتھ دے کے روکا اور میں گیا جیل، گاڑی بھی گئی اور اس پلیٹ کو لے کے میں کیا کروں گا میں؟ آپ کہو گے خالی یہ پلیٹ 50,000 کی دے دے، گاڑی تو لے لے، شاید یہ پلیٹ کسی اسکریپ میں کسی کام میں آ جائے، یہ کسی اور جعلی گاڑی کے لگانے کے کام آ جائیے. گاڑی کی 2 ٹکے کی ویلیو آپ کی نظر میں نہیں رہے گی. کیوں؟ آپ کو ہر وقت خوف ہوگا شاید یہ پولیس والا مجھے گھور گھور کے دیکھ رہا ہے، شاید یہ مجھے دیکھ رہا ہے، شاید یہ خوف ہی آپ کو ڈپریشن کا مریض بنا دے گا. دنیا کی جتنی چمک دھمک ہے، جتنی بلڈنگیں ہیں، جتنا کچھ عیاشی کا اللہ نے دنیا میں سامان پیدا کیا ہے، اس پہ ایک نمبر پلیٹ لگا دی ہے. وہ نمبر پلیٹ ہے فنا. یہ فنا ہونے والی ہے، یہ چیز ختم ہونے والی ہے، یہ تم سے چھن جانے والی ہے. یہ ایک ایسی چیز ہے، اب انسان کو ہر وقت خوف رہتا ہے لاشعور میں. وہ کتنا ہی اس خوف کو دل سے نکالے لیکن وہ خوف اسے کھاتا ہے. یار میری یہ دولت چھن سکتی ہے، میری یہ صحت چھن سکتی ہے، میری عیاشی چھن سکتی ہے. یہ خوف انسان کو ڈپریشن میں، سٹریس میں لے کے جاتا ہے. یقین نہ آئے تو دیکھ لیں دنیا کی عیاش ترین قومیں جن کے پاس ٹینشن کی کوئی چیز نہیں ہے، سب سے زیادہ ٹینشن انہی ملکوں میں پائی جائے گی. کیوں؟ کچھ خوف ایسے ہیں جو گورنمنٹ کے اختیار میں نہیں ہے، گورنمنٹ لوگوں سے وہ خوف چھین نہیں سکتی. ابھی زلزلہ آیا نا جاپان میں، کیا گورنمنٹ شیورٹی دے سکتی ہے کہ زلزلہ کبھی نہیں آئے گا؟ بولو نا کیا ہو گیا بھائی، یہ ہو سکتا ہے کیا؟ کیا سونامی طوفان سے گورنمنٹ بچا سکتی ہے لوگوں کو؟ COVID-19 جب آیا کروڑوں لوگوں کی جان لے کر گیا ہے، کس قدر خوف. یہ خوف وہی کسٹم والی نان پیڈ کسٹم جو گاڑی ہے نا اس کی طرح ہی ہے. ہر وقت کیا ہوگا؟ خوف. آپ لاشعور میں یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے، یہ ختم ہونے والا ہے. اس دنیا میں سکون سے وہی رہ سکتا ہے جو اس کو پہلے سے مسافر خانہ سمجھ لے اور یہاں کی کامیابی کو کامیابی نہ سمجھے، یہاں کی ناکامی کو ناکامی نہ سمجھے. اس کو مسافر خانہ سمجھ کے تو انجوائے کیا جا سکتا ہے میرے بھائی، اس کو اگر اصل جگہ سمجھ لی تو انجوائمنٹ کے علاوہ آپ کو دنیا کی ہر چیز ملے گی. ایک آدمی ٹرین میں بیٹھا ہوا جا رہا ہے اور ڈبے کو اپنا سمجھنا شروع کر دیا اس نے، کہ اس بوگی میں جا رہا ہوں یہ میری نانی سے مجھے وراثت میں ملا ہے اور یہ میرا ڈبا ہے. اب ہر اسٹیشن پہ اس کو خوف ہوگا نا، اور جیسے جیسے اس کی منزل قریب آئے گی خوف بڑھتا شروع ہو جائے گا. یار ابھی مجھے یہاں سے کیا کریں گے؟ دیکھو ایک غریب آدمی کو بزنس کلاس میں بٹھا دیا، جھونپڑی سے نکال کے کہاں بٹھا دیا؟ بزنس کلاس. جیسے آپ لوگ کو پاکستان سے اٹھا کے یہاں شفٹ کر دیا گیا، تو آپ کے لیے تو ایسے ہی جیسے بزنس کلاس میں آ گئے آپ لوگ. تو غریب آدمی کو کسی نے کیا نہلا دھلا کے اچھے کپڑے پہنا کے بزنس کلاس میں بٹھا دیا. اب وہ اس کو بڑا مزہ آیا، اے سی کی ہوائیں آ رہی ہیں، بٹن دبا رہا ہے، کولڈ ڈرنک آ رہی ہے. کراچی پاکستان میں کمی آتی ہے لیکن آنی چاہیے. بہرحال بٹن دبایا، بریانی آ گئی. بزنس کلاس میں تو اصول ہے، جو منگوا رہے ہو آئے جا رہا ہے. اب اس کو اتنی محبت ہو گئی اس ڈبے سے، اس بوگی سے، وہ کہہ رہا ہے یار یہ جگہ چھوڑنے کی نہیں ہے. اور وہ جو اسٹیشن پہ کھڑے ہوئے ہیں نا शरबत बेच रहे हैं, गन्ने का जूस बेच रहे हैं, उनको नाकाम समझना शुरू कर दिया। यार इनकी कोई जिंदगी है? प्रेजेंट देखो, हाल देखो, फ्यूचर मत देखो। मेरा हाल कितना अच्छा है, कैसे थ्री पीस सूट टाई में बैठा हुआ हूं, और ये नहीं पता तुझे ज़कात में मिला है मेरे भाई, आगे जाके छीन लिया जाएगा, और कैसे मैं बिजनेस क्लास में लाइफ को इंजॉय कर रहा हूं। इंजॉय नहीं कर रहा तू, इसलिए कि तूने इसको अपना डब्बा समझना शुरू कर दिया है। बेवकूफ आदमी, जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी, तुझे वो झोंपड़ी याद आना शुरू होगी कि थोड़े ही टाइम रह गया, एक स्टेशन, दो स्टेशन, तीन स्टेशन। ये लोग जो खुश हो रहे हैं ना 2024, अंदर से खुश नहीं हो रहे, ऊपर से खुश हो रहे हैं, अंदर से पता है एक साल जिंदगी का और खत्म हो गया, अंदर से तो घुल रहे होते हैं। यार ये क्या हो रहा है, इसको रोको, ये क्यों आ गया 2024, नहीं आना चाहिए था। जितने लोग जिन्होंने 2024 में खुशियां मनाई हैं, आप इनसे अगर मशवरा लेते कि हमारे अल्लाह मियां से ताल्लुकात हो गए हैं, अल्लाह ने कहा है कि अगर तुम लोग सब अक्सरियत इसको वोट देते हो कि 2023 पे आके रुक जाए, 24 ना आए, तो तुम क्या चाहते हो, सब किस बात को वोट देंगे कि ना आए, इसको डिले कर दो भाई। तो जिस चीज को आप डिले करना चाहते हो उस पे नाच कैसे रहे हो? तो ये मस्नूई खुशी है, ये नेचुरल नहीं है। ये देखो, खुश होना अलग चीज है, खुशी मनाना बिल्कुल एक अलग चीज है। खुशी मनाना तो बिल्कुल एक अलग चीज है। मैं तभी तो कहता हूं, इस्लाम ने जो हमें दो ईदें दी हैं उसमें खुश होता है इंसान, खुशी मनाने की जरूरत नहीं रहती, खुश होता है इसलिए मनाता है। और एक होती है मना बिला वजह तकल्लुफ करके मना रहा है, खुशी कोशिश कर रहा है खुश होने की, खुश जब खुश होने की रीजन नहीं होती तो फिर खुश होता नहीं है इंसान। आपको कोई शख्स लतीफा ना सुनाए और कहे हंसो, कोई एक्टर होगे तो आप मसनूई हंसी हंस लोगे, वरना नॉर्मल आदमी के लिए ऐसे मौके पे हंसना बहुत मुश्किल। भाई आप किसी को हंसाना चाहते हो तो उसको हंसने का ऑर्डर मत दो, हंसी के असबाब पैदा कर दो। लतीफा सुना दो कोई खानदानी किस्म का, जैसे आप लोग मुझे लग रहा है बोर, तो मैं एक सुना देता हूं अभी, कब्रिस्तान वाला, भाई अब्दुल गफूर वाला। क्योंकि मैं जब एयरपोर्ट पे आया था ना, तो वो जो एयरपोर्ट के सिक्योरिटी ऑफिसर थे मुझे साइड पे ले गए, चाय पिलाया, उन्होंने बोला मैं जितना डिप्रेशन में था, मुफ्ती साहब एक लतीफा मैंने आपका सुना है और मैं बिल्कुल क्या हो गया, फ्री हो गया। वो मैं सुनाता था ना, कारी साहब बीमार नहीं होते थे, तो बच्चों ने शरारत की कि बीमार होते नहीं है, छुट्टी करते नहीं है, तो कारी साहब कब्रिस्तान से गुजर के हमेशा कहते अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर। तो एक बच्चा कब्र के पीछे छुप के बैठ गया, कारी साहब गुजरे, अस्सलाम वालेकुम या अहले कुबूर, पीछे से बच्चे ने आवाज दी, वालेकुम अस्सलाम भाई अब्दुल गफूर। तो कारी साहब क्या हो गए, बेहोश, कब्र से आज क्या आ गया, रिप्लाई आ गया। तो अब देखो, मैंने खुशी का सबब पैदा किया तो आप क्या हो गए? अगर मैं आपको ऑर्डर देता आप हंसे दो तीन दफा, आप कहते हैं मौली साहब आपके ऊपर का सेटिंग, मुझे हमें लगता है कि ध्यान कर करके अंदर से सेटिंग क्या हो गई है, दिमाग खुश हो गया आपका, को बादाम पिस्ते खाओ थोड़ा सा, क्या मुझे बोलने की जरूरत नहीं है आपको खुश करने के लिए, लतीफा सुना दूंगा आप सब हंस पड़ेंगे। तो हो समझ लो, ये जो न्यू ईयर पे खुशी मना रहे हैं, हैप्पी बर्थडे की खुशी, ये सब टोपी ड्रामा है, ये मसनूई है, तो खुशी का सबब नहीं है। मैं अक्सर मिसाल देता हूं, देखो इस्लाम की दो ईदें और गैर मुस्लिमों के त्योहारों में बड़ा फर्क है। गैर मुस्लिमों के जो खुशी के दिन है ना, उनमें खुश होने की कोई वजह नहीं होती, ऐवें खुशी मना रहे होते हैं। जैसे क्रिसमस को देख लो आप, कहते हैं जी हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस दिन पैदा हुए, अव्वल तो ऐसा है नहीं, लेकिन चलो फर्ज कर लो, तो वो तो 2000 साल पहले पैदा हुए ना, अब थोड़ी हो रहे हैं पैदा, क्या ख्याल है भाई? ईद मिलादुन नबी पे भी इसी तरह के भी पैदा हुआ, तो हो गए ना, खुशी तो उस चीज की मिलती है जो अब हो रही है। इस्लाम ने जो आपको ईदें दी हैं, ईद उल फितर और ईद उल अजहा, दोनों में ओरिजिनल खुशी होती है आपको। ईद उल फितर में इस बात की खुशी, एक महीना आपने रोजे रखे, आदमी कंटिन्यू जो भी एक महीना रोजा रखता है ना, टेंशन में आता है लाजमी, सारी खाने पीने की रूटीन चेंज हो जाती है, आउट हो जाती है, उसके बाद छुट्टी मिलती है कि कल से खाना पीना स्टार्ट। ऐसा ही है जैसे शादी में कराची और पंजाब में जो ये बहुत हमें देखने को मिलता है, बिठाया हुआ था बारातियों को, और जब तंबू खुलता है तो क्या खुशी होती है कि नहीं होती? देख के ढक्कन जब खुलते हैं तो उनको बताना पड़ता है खुश हो जाओ, कहते हैं आपके मशवरे की हमें जरूरत नहीं है, ऐसे देख की तरफ भागते हैं ना लोग, एक अजीब सीन होता है। अब यूट्यूब पे देख ले, वीडियोस पड़ी हुई है, वो तो जरूरत क्या, आप तो भुगते हुए, हम सब भुगते हुए। तो अल्लाह मियां क्या करते हैं, देख का ढक्कन ईद के दिन खोल देते हैं, भाई तुम सुबह 4 बजे खाते थे, कोई टाइम नहीं है सुबह 4 बजे खाने का, क्योंकि खाने का नेचुरल, पूरी दुनिया में कोई भी कौम सुबह 3:30-4 बजे नहीं खाती, ना नाश्ते का टाइम है ना लंच, इस खाने के लिए कोई नाम ही नहीं है दुनिया की डिक्शनरी में, उस टाइम खाते हैं हम रमजान में, अजीब ही, और सारा दिन भूखे प्यासा, तो फिर एक महीने के बाद, और फिर तरावी पढ़ते हैं, फिर एक महीने के बाद अल्लाह की तरफ से छुट्टी, तो मादी खुशी भी होती है, रूहानी खुशी भी होती है। मादी खुशी ये होती है कि अब खाने पीने की हमें छुट्टी मिल गई, और रूहानी खुशी ये होती है कि 30 रोजों का अजर अल्लाह ने हमारे अमाल में लिख दिया, कोई तो ढंग का काम किया हमने अल्लाह को खुश करने के लिए, कुछ तो किया, तभी तो अल्लाह ने फरमाया लितु कब्बिरुल्लाह अला मा हदाकुम वला अल्लकुम तशकुरून, ईद की नमाज पढ़ने इसलिए आओ अल्लाह की किबरियाई बयान करो और उसका शुक्र अदा करो कि तुम्हारे अमाल में कितनी नेकियां लिख दी उसने। तो इस खुशी को मनाने की जरूरत नहीं होती, आदमी ऑटोमेटिकली खुश होता है, उसके इजहार के लिए ईद की 2 रकतें रखी गई हैं, बस जज़ाकअल्लाह। और बकरईद में क्या होता है, वहां भी हमें 2 मादी और रूहानी दोनों खुशियां मिलती हैं। मादी खुशी क्या मिलती है, इंसान की खुराक में सबसे लजीज तरीन और सबसे सेहत के लिए अच्छी खुराक गोश्त समझी जाती है, वो गोश्त हम ताजा गोश्त जबा करके खाते हैं, गरीबों को खिलाते हैं, गरीब भी खुश मालदार भी खुश, ये तो जिस्मानी खुशी है, क्योंकि जितने भी लजीज खाने हैं वो सब किससे बनते हैं, गोश्त। कभी आपने देखा वलीमे में दाल चावल खिलाया हो किसी ने, है भाई आज हमारे बेटे का वलीमा है, क्या पकेगा, भिंडी पकाएंगे हम आपके लिए, आदमी कहता है यार वलीमे में तो बकरा दुम्बा, यहां से बात शुरू होती है बकरे दुम्बे से, हर खुशी के मौके पर क्या है, गोश्त अलज़्ज़ुल लज़्ज़ात है, लज्जतों में सबसे लजीज चीज क्या है, गोश्त है। तभी मैं हिंदुओं से कहता हूं एक दफा खाओ, मजा ना आए पैसे वापस। शोएब अख्तर की जो स्पीड इतनी थी ना बॉलिंग में, तो इंडिया में उस जमाने में किसी जो खिलाड़ी था ना क्रिकेटर, उससे सवाल किया गया कि पाकिस्तान के पास इतना, जिसको तेज गाम नाम दिया गया और स्पीड अख्तर भी नाम दिया बाज लोगों ने, शोएब अख्तर को स्पीड अख्तर नाम दिया, रावलपिंडी एक्सप्रेस इतनी स्पीड तेज है, आपके बॉलर की स्पीड तेज क्यों नहीं है। तो इंडिया के वो बॉलर ने कहा कि वो गोश्त खाते हैं, हम गोश्त नहीं खाते, गोश्त के बगैर ना शादियों की स्पीड बढ़ सकती है और ना बॉलिंग में आपकी स्पीड बोलो बढ़, गोश्त के बगैर नहीं हो सकता भाई, प्रोग्राम तो बढ़ गया, गोश्त नहीं खाया तो प्रोग्राम तो बढ़ गया। तो हमें बकरईद में किस बात की खुशी होती है भाई, गोश्त भी वाफर मकदार में और उसका लज्जत ही अलग होती है, और ये रूहानी खुशी है कि इस गोश्त की निस्बत किसकी तरफ है, अल्लाह की, अल्लाह की मेजबानी है, तभी इसमें रोजा रखना क्या है, हराम। आम दिनों में आप गोश्त खाते हैं भाई, वसीम भाई ने दावत की है, कलीम भाई ने दावत की है, गफ्फार भाई ने दावत की है, बकरईद में रोजा हराम क्यों है, इसलिए कि दावत किसकी तरफ से है, अल्लाह की। अल्लाह कहता है मैं गोश्त खिला रहा हूं और तू कह रहा है आज मेरा रोजा है, और हर बाल के बदले में एक नेकी, इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जिंदा कर लिया, तो जिस्मानी खुशी भी हो रही है और रूहानी भी। तो इस्लाम खाली पीली की खुशियां नहीं देता आपको, मसनूई खुशियां नहीं देता, इस्लाम आपको ओरिजिनल खुशियां देता है, सच्ची मुच्ची की खुशियां देता है, समझते हो कि नहीं समझते हो। तो अब मैं अपनी बात की तरफ आता हूं कि जो मुसाफिर खाने से दिल लगा ले, अब उसको मसनूई खुशी तो वो मनाता रहेगा, ओरिजिनल खुशी उसको नहीं। ट्रेन में बिठा दिया, और वो गरीब जिसको झुग्गी से लाकर ट्रेन में बिठाए बिजनेस क्लास में, अब वो समझ रहे कि ये मेरा घर है, मुझे यहां से नहीं उतारो, ओ भाई यहां से अच्छे अच्छे गए हैं, जब स्टेशन पे पहुंचोगे तो यहां से आपको उतरना पड़ेगा, ऐसा हो नहीं सकता। फिर मंजिल में अगर आपकी झुग्गी है तो झुग्गी, बंगला है तो बंगला। तो जैसे जैसे मंजिल करीब आएगी, आप बताओ उसकी खुशी ज्यादा होगी या कम होगी, कम होती चली जाएगी। बिल्कुल यही हाल इस दुनिया का है, आप जन्नत जहन्नम को बिलफर्ज ना भी मानो, लेकिन ये मुसाफिर खाना है मेरे भाई, और जो मुसाफिर खाने से दिल लगाता है, यहां की खुशियों को खुशियां समझना शुरू कर देता है, यहां के गमों को ओरिजिनल गम समझना शुरू कर देता है, तो उसे अब गमजदा होने के लिए अलग से किसी गम की जरूरत नहीं है, ना किसी से गम और टेंशन उधार लेने की जरूरत है उसको, उसको गम खुद बहुत उसके ऊपर मुसल्लत होना शुरू हो जाएंगे। यकीन ना आए तो देख लो ना, तरक्की याफ्ता मुल्कों में खुदकुशियों के रेशो सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा है। तो इस्लाम आपको ओरिजिनल खुशी सिखाता है, वो ओरिजिनल क्या है, इस्लाम का एक दावा है फितरत अल्लाह अल्लती फतर अन्नास अलैहा, کیا خدا کی قسم، صرف ایک یہ آیت ہی اسلام کے برحق ہونے کے لیے دلیل کے طور پہ کافی ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال پہلے جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، ایک ایسا دین لے کر آئے کہ آپ نے فرمایا یہ دین جو ہے انسان کی نیچر اور یہ دین ایک ہی چیز کے دو نام ہیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ چھوٹا دعویٰ ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی، دیکھو ساری دنیا ابھی آرگینک پہ آ رہی ہے نا، کہ بھائی یہ خربوزہ وہ ہے جو یوریا ڈال کے نکالا ہے، ایک وہ ہے جو نیچرل ہے، تو دونوں خربوزوں میں کون سا خربوزہ اچھا ہے؟ نیچرل اچھا ہے۔ ایک گندم وہ ہے جو ہائبریڈ گندم کہلاتی ہے، اتنی سی گندم ہوتی ہے پیدا اتنی ہو رہی ہے۔ ونس اپون اے ٹائم گندم بڑے ہونے میں ٹائم لگاتی تھی، پھر ایک وقت کے بعد جا کے اس میں پھل نکلتا تھا، گندم نکلتی تھی، اور یہ جو گندم آج کل آ رہی ہے نا یہ اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی جیسے فارمی مرغی۔ میں تو مرغیاں بہت پالتا ہوں، ایک فارمی مرغی اور دیسی مرغی میں چوزوں میں بڑا فرق ہے۔ فارمی چوزے کو جہاں بٹھائیں گے بیٹھ جائے گا، پولیس آئے گی اس کو اٹھانے کے لیے۔ دیسی چوزے کو آپ ایک جگہ ٹکا کے دکھاؤ، ہم جب شام کے وقت اپنے ڈربے میں چوزے بند کرتے ہیں نا تو اتنا بھگاواتے ہیں ہمیں چوزے، آسان نہیں ان چوزوں کو پکڑنا۔ وجہ کیا ہے؟ دیسی۔ میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو بھائی یاد رکھو، جیسے دیسی گھی میں اور ڈالڈا میں فرق ہوتا ہے، ایسے ہی آپ جس ٹریک پہ چل رہے ہیں نا، ایک ٹریک وہ ہے جو دیسی ٹریک ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے رکھا ہے جو نیچرل ہے، اور ایک ٹریک وہ ہے جو آرٹیفیشل ہے جو گورے کا وضع کرتا ہے جو سائنسدانوں نے بنایا ہے انسانوں کے لیے۔ یہ طے کرنے کے لیے اس میں انسانوں کو خوشی ملے گی؟ کلا، ہرگز ایسا نہیں ہو سکتا۔ آپ اس ٹریک پہ چلیں گے نا جو آرگینک ہے، جو دیسی ٹریک ہے، جو اللہ نے پیدا کیا ہے، اس ٹریک پہ چلنے سے آپ کو خوشیاں ملیں گی۔ جو سائنسدانوں کا دیسی مرغی اللہ نے پیدا کی ہے، فارمی کس نے بنائی ہے؟ وہ سائنسدانوں نے سیٹنگ کی ہے، اس میں ٹیکے شیکے لگا کے اس کو ایسا کر دیا، ٹھیک ہے نا؟ اگر وہ اللہ نے کی ہے اس میں، کیونکہ یہ فارمی مرغی میں بڑا ڈاکٹروں کا اختلاف ہے، کچھ کہتے ہیں ٹیکے لگا کے بڑا کرتے ہیں، کچھ کہتے ہیں نیچرل ہے۔ بھائی نیچرل ہے تو پھر وہ بھی دیسی ہے نا۔ میرا مقصد فارمی مرغی دیسی مرغی کا تقابل نہیں ہے، میرا مقصد یہ ہے دیسی اور فارمی چاہے کوئی بھی چیز ہو، کوئی بھی چیز ہو۔ تو انسان کے لیے سکون کس چیز میں ہے؟ جو اس کی نیچرل لائف ہے، اس کے علاوہ انسان کو سکون نہیں مل سکتا۔ جیسے صحت آپ کو دیسی غذاؤں میں ملے گی، اب تو گورے بھی دیسی گھی کھا رہے ہیں، آپ کو پتا ہے پاکستان سے دیسی گھی ایکسپورٹ ہونا شروع ہو گیا ہے۔ انہوں نے کہا بھائی یہ دیسی گھی جو ہے نا یہ کولیسٹرول نہیں بڑھاتا آپ کا۔ پہلے کیا کہتے تھے ڈاکٹر؟ کسی بھی قسم کا گھی مت کھاؤ کہتے تھے نا۔ اب ڈاکٹر کیا کہہ رہے ہیں؟ بھائی دیسی گھی کھا سکتے ہو، جو دوسرے گھی آ رہے ہیں نا وہ نہیں کھاؤ آپ۔ ہر چیز میں کس طرف آ رہے ہیں ہم؟ آرگینک کی طرف آ رہے ہیں۔ تو جیسے مادی چیزوں میں، دیکھیں آرگینک کی طرف کیوں آ رہے ہیں، اس کی میں ایک لاجک پیش کرتا ہوں۔ انسان جتنی ہی ترقی کر لے نا، انسان کی فطرت کبھی چینج نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر جاپان میں کوئی سائنسدان پیدا ہو کہ ہم نے ایسے واش روم انہوں نے بنا لیے، میں تو اس پہ دیکھ کے حیران ہو رہا ہوں یار۔ آج انہوں نے ابھی میں واش روم، نماز سے پہلے ہم گئے نا تو بہت سارے بٹن لگے ہوئے تھے، اور واش روم استعمال کرنے کا طریقہ، میں نے کہا یار یہ تو پورا ڈپلوما کر کے واش روم جانا پڑے گا۔ بٹن لگے ہوئے، ایک بٹن تھا الارم۔ میں نے ان سے پوچھا یار یہ بٹن الارم کا کیا مطلب ہے یہاں پہ؟ شاید اس لیے کہ بھائی کوئی بندہ، یعنی کوئی اس میں گانے کا نشان آیا ہوا تھا نا موسیقی کا، میں نے کہا شاید کچھ قبض ہو تو انجوائے کرے، گانا وانا سنے یہاں بیٹھ کے، شاید کو پتا نہیں، شاید یہ مقصد ہو بھائی قبض ہے تو اب چلو یہ بٹن دباؤ گے تو گانا لگ جائے گا۔ تو میں نے ان سے پوچھا، ہمارے ساتھی تھے، انہوں نے کہا بھائی یہ بٹن غلطی سے میں ایک دفعہ دبا چکا ہوں، جیسی میں نے دبایا تھا ایمبولینس آ گئی، پولیس آ گئی، ایمرجنسی۔ یہ ان لوگوں کے لیے جو بےچارے بوڑھے لوگ ہوتے ہیں، واش روم میں کوئی اٹیک ہو گیا، کچھ ہو گیا تو سارا عملہ حرکت میں، فوراً پہنچ جاتے ہیں یہ لوگ۔ تو کہہ رہے پھر میں نے بتایا، میں تو چیک کر کے دیکھ رہا تھا یہ ہے کیا، اور پانی اور ٹیکنیکل قسم کے۔ اب جاپان کے سائنسدان جو تھے انہوں نے کیا کہا؟ آپ نے کہا یار ایسی ٹیکنیکل چیزیں بتا رہے ہیں زبردست۔ تو اب ایک سائنسدان اٹھا، اس نے کہا کہ بھائی، آپ نے اس سائنسدان کو دیکھا کہ اب وہ کیا کر رہا ہے؟ روٹی کھا رہا ہے یا برگر کھا رہا ہے، جو بھی کھا رہا ہے دانتوں سے چبا چبا کے نکل رہا ہے۔ آپ نے اس سائنسدان سے کہا یار تم لوگوں نے اتنی ترقی کر لی، کھاتے تم ابھی بھی پینڈوؤں کی طرح ہی ہو، ہم بھی پینڈوؤں کی طرح چبا چبا کے روٹی کو گھماتے ہیں، حلق میں اتارتے ہیں، پھر हजम होता है, फिर चार छह घंटे के बाद कहां जाते हैं वॉशरूम, और हम भी गंदुम खाते हैं, तुम भी गंदुम खा रहे हो, हम भी मकई खाते हैं, तुम भी क्या खा रहे हो मकई, हम भी गोश्त खाते हैं, तुम भी गोश्त, तो ये क्या तरक्की यार। ये तो आदम अलैहिस्सलाम भी खाते थे 10,000 साल पहले, इसी तरह खाते थे, इसी तरह दांतों से चबाते थे, इसी तरह प्यास लगती थी, इसी तरह पानी पीते थे, फिर वही वॉशरूम, फिर वो कजाए हाजत। अब तो साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, अब तो कोई बोतलें लगाओ आप, या कोई स्प्रे होना चाहिए, या कोई बैटरी होनी चाहिए जिससे आप चलो। अब आपको भूख लगी, आपने बैटरी में अपना हाथ रखा और भूख क्या हो गई, बोलो ना भाई, तरक्की हो गई है ना, तरक्की हो गई है। पुराना स्टाइल थोड़ी, गंदुम क्यों खा रहे हो, अब तो आप प्लास्टिक खाओ, क्या ख्याल है। तो प्लास्टिक की रोटियां होनी चाहिए, गंदुम तो वंस अपॉन अ टाइम 20,000 साल पुराना इंसान गंदुम और चावल और ये सब चीजें खाया करता था, चबाते। देखो सब हंसते, हम जब छोटे बच्चे थे ना तो हम लोग अंग्रेजों को तो देखा नहीं था हमने, तो हमें बताते थे अब अंग्रेज ऐसे होते हैं, अमेरिका ऐसे होता है, तो हमने कहा टीवी में गोरा देखा तो ऐसे ही हंस रहा था जैसे हम हंसते हैं। तो मैंने अपने बड़ों से पूछा, हंसते तो ऐसे ही हैं जैसे इंग्लिश में क्यों नहीं हंस रहे, ये मेरा मकसद ये था, मेरा ख्याल ये था, हंसते सब उर्दू में ही है पूरी दुनिया, हंसता कोई दूसरी जबान में नहीं है, हंसते सारे उर्दू में ही है। फिर बताया हुआ भाई उर्दू में नहीं हंस रहे, इनकी हंसी तो एक ऐसी चीज है जो इसकी कोई जबान नहीं होती। तो अब जापान के साइंसदान ने इतनी तरक्की कर ली और वो ये कहना शुरू कर दे कि जी अब हम प्लास्टिक की रोटियां खाएंगे, अब हम दांतों से चबाएंगे नहीं, हम ग्राइंड करेंगे। ये चबाना वबाना पुराने जमाने में टाइम लगता था भाई, दांत इसलिए थे। अब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है, बल्कि अब तो ग्लूकोज के इंजेक्शन लगेंगे बस, जाहिर है मरीजों को तो लगा देंगे 2-4 दिन, उसके बाद डॉक्टर क्या कहेगा, भाई तू खाना पीना शुरू कर, ये ग्लूकोज की बोतलों पे ज्यादा अरसा नहीं चलेगा। क्यों भाई, क्या वजह क्या है, साइंस ने इतनी तरक्की कर ली, अभी भी गंदुम खानी है, अभी भी मकई खानी है, अभी भी जौ खानी है, अभी भी गोश्त खाना है, दांतों से चबाना है, वही प्रोसेस जो 20,000 साल पहले था, फिर यूं करके पेट में वो खाना जाएगा, फिर वो हजम होगा, फिर आपको वॉशरूम जाना पड़ेगा। यार इस तकल्लुफ से निकालो अब दुनिया को, अगर आप साइंसदानों के पास गए और आपने ये कहा डॉक्टर साहब इस तकल्लुफ से अब इंसानों को निकालो, अब दुनिया बहुत एडवांस हो गई है, अब इतना टाइम नहीं है, अब जो है ना, अब तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने दुनिया को ग्लोबल विलेज की तरह बना दिया है और अब दुनिया बहुत फास्ट है, अब ये कि बैठो और खाओ और चबा चबा के उतार, अब साइंस एडवांस हो गई है, अब कुछ और लेकर आओ। तो डॉक्टर क्या कहेगा, भाई साइंस कितनी तरक्की कर ले, इंसान कमबख्त वही है जो 10,000 साल पहले था, उसकी नीड उसकी जरूरतें सारी, वो कभी भी चेंज बोलते क्यों नहीं हो, बल्कि पहले फितरत के ज्यादा करीब था, लंबी उम्रें थी, अब फितरत से दूर हो गया तो उम्रें क्या हो गई हैं, कम हो गई। बल्कि कहेगा आपको डॉक्टर कहेगा कि भाई आप जितनी मर्जी तरक्की कर लो, लेकिन लाइफ स्टाइल जितना पुराने जमाने के इंसान के मुताबिक होगा उतना अच्छा होगा, क्या ख्याल है भाई। नहीं आ रही समझ में यार, ये मैं जरा करीब कर लूंगी, ये मुझे इस तरह अब बोलने में आसानी होगी, देखो कितनी साफ आवाज है, नहीं तेज नहीं करें बस इतना काफी। तो मुझे एक बात बताएं, जो माहिर डॉक्टर है वो क्या कहेगा कि भाई साइंस कितनी तरक्की कर ले, आपका जो खुराक का और रहन सहन का स्टाइल जितना कदीमी तरह से होगा उतना ज्यादा आपकी सेहत अच्छी होगी। पहाड़ी लोगों की सेहत, मैं तो गया हूं अभी बलोचिस्तान, जो बिल्कुल पसमानदा इलाका समझा जाता है, वहां में देखकर आया 99-99 साल लोगों की उम्रें, सहराओं में रहते हैं। गिलगित के पहाड़ों में गया हूं 90-99 साल, और एक बात तो आपको शर्मिंदा करने के लिए और होने के लिए भी, 80 साल के एक बुजुर्ग थे, उनके औलाद हो रही है, दूसरी शादी की उन्होंने और औलाद हो रही है, वो तो साइंस और टेक्नोलॉजी से बहुत ज्यादा दूर। मेरे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह ताला लुधियाना के थे, हिंदुस्तान के, मैंने बयान में कहा कि 80 साल की उम्र में उन्होंने दूसरी शादी की और औलाद हुई, तो उनके रिलेटिव की तरफ से मेरे पास मैसेज आया, हजरत आपने 10 साल उम्र कम बताई है, 90 साल में दूसरी शादी की थी और उनके औलाद हुई थी। अब शर्मिंदगी अगर हो रही है तो फिर किसी और, अभी तो मेरे बयान को फोकस करें, ठीक है। चलो शर्मिंदगी पे एक और सुना दूं, ताइफ में ना, ताइफ ये जो सऊदी अरब का है ना ताइफ, ये मैं बता रहा हूं कि सेहत में जितनी कदीमी तर्ज जिंदगी होगी उतना आपकी सेहत क्या होगी, अच्छी होगी। तो ये मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि इसी तरह मेरे भाई जो फितरत है ना, जिससे अल्लाह हमें चलाना चाह रहे हैं, जिससे हम जदीद इस जिंदगी की वजह से उस फितरत से दूर हो गए हैं, तो हमारी रूहानी जिंदगी भी स्ट्रांग और सुकून और मेंटली भी हम स्ट्रांग उसी वक्त होंगे जब उसी फितरत पे चले जो सदियों पहले आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने जो फितरत दी थी, जो रास्ता दिया था मूसा अलैहिस्सलाम को, दाऊद अलैहिस्सलाम को, सुलेमान अलैहिस्सलाम को, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो अल्लाह ने रास्ता बताया कुरान में और हदीसों में जो रास्ता है उसी पे चलेंगे तो सुकून मिलेगा आपको। अदरवाइज सुकून के अलावा आपको सब कुछ मिल जाएगा, सुकून नहीं मिलेगा आपको। दौलत मिलेगी, पैसा मिलेगा, हो सकता है सेहत भी मिल जाए, सुकून नहीं मिलेगा, क्योंकि नेचर में ही सुकून है मेरे भाई, और नेचर साइंसी तरक्की से चेंज नहीं होती। तो मैं वो आगे वाकया तो सुना देता हूँ। वो ताइफ में ना हमारे उस्ताद थे, वो ताइफ जो मक्का मुकर्रमा के करीबी शहर है ना सऊदी अरब में, वहां के काजी हैं, सऊदी अरब के जज हैं, बूढ़े जज थे। तो हमारे उस्ताद ने उनसे पूछा कि हजरत आप इतने सालों से केसेस निपटा रहे हैं तो कोई बड़ा ही अनोखा वाकया आपकी जिंदगी में आया हो तो बताइए, इसका इको अगर खत्म कर दें तो बहुत अच्छा होगा, कोई अनोखा वाकया आपकी जिंदगी में आया हो तो बताइए। उन्होंने फिर बताया मेरी जिंदगी में एक अजीब वाकया आया कि चार औरतें आईं, जवान औरतें, उन्होंने केस किया अपने हस्बैंड के खिलाफ कि हमारा हस्बैंड हमारे करीब बहुत ज्यादा आते हैं जिसकी वजह से हमें टेंशन होने लगी है। यानी मियां बीवी का जो रिलेशन होता है ना वो हमसे इतना ज्यादा कायम करते हैं कि अब हमारे बस में, हमारी बर्दाश्त से बाहर है, पाबंदी लगाई जाए उसको। चार बेगमात हैं और मियां साहब ने चारों को इतनी टेंशन दी हुई है कि वो बीवियां अदालत पहुंच गई, बुरके में पर्दे वाली औरतें थी, वो अदालत में पहुंच गई कि भाई उसको बोलो कि अब यानी नहीं आएंगे। तो काजी साहब कहते हैं मैं हैरान हुआ यार कौन टार्जन की औलाद है जो जिसने चार बीवियों को इतनी टेंशन दी हुई है, तो कौन है भाई ये टार्जन। खैर कहते हैं अब केस चूंकि आया था, रिपोर्ट आई थी तो मैंने बुलवा लिया उसको। खैर मेरा ख्याल ये था कोई होगा, स्पीड ब्रेकर बने हुए होंगे बड़े बड़े, ये तो मैं अपना तबसरा कर रहा हूँ, जो बॉडी बिल्डरों के होते हैं ऊट पटांग किस्म के ऐसे ऐसे करके जो आ रहे होते हैं मसल, तो वो कोई इस टाइप का कोई होगा बड़ा पावरफुल आदमी। जब मैं देखा तो वो एक बाबा है लाठी हाथ में और कमर उसकी झुकी हुई, वो आ रहा है कोर्ट में। कह रहे मैंने कहा यार इस बुजुर्ग को देखो और इसके काम देखो। कह रहे मैंने कहा कि भाई केस तो बाद में होगा, मैं बुजुर्ग को साइड पे ले गया। मैंने बोला अब खाता वाता क्या है तू पहले ये बता खाता क्या है? पहले इसके उलूम से फायदा उठाया जाए, केस तो होता रहेगा। उस बुजुर्ग ने ये बोला कि मैं सिर्फ खजूर खाता हूँ, जैतून का तेल है, ऊंटनी का दूध है, बस इस तीन चीजों पर जिंदगी गुजर रही है। तो अगर वो टेक्नोलॉजी और डॉक्टरों के मशवरे से चल रहा होता एक्चुअली एक मुतवाजन गजा के लिए ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए तो ये भी चाहिए तो ये हालात होते भाई। जदीद खुराकें खा रहा था या कदीम खुराकें? अब वो बुजुर्ग कहते हैं कि भाई वो तो 1000 साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी चूंकि खजूर खाते थे, अब तो साइंस ने 3-4 हजार साल पहले मूसा अलैहिस्सलाम भी चूंकि खजूर खाते थे तो अब तो साइंस ने इतनी तरक्की की, अब मैं पिज्जा खाऊंगा, अब मैं खजूर नहीं खाऊंगा। या अब वो जो जैतून का तेल है वो तो कुरान में भी उसका तस्करा है, मूसा अलैहिस्सलाम 3-4 हजार साल पहले मूसा कलीमुल्लाह ने भी जैतून का उसमें भी उस वक्त जैतून खाया जाता था, तो अब चूंकि साइंस ने इतनी तरक्की की है अब मैं डॉक्टरों का तजवीज करदा ऑयल जो फला कंपनी ने बनाया है वो मैं खाऊंगा, और ऊंटनी का दूध हो ये पुराने जमाने की पुरानी बातें, मैं पीऊंगा डब्बे का दूध जो रिकमेंड किया है मुझे सऊदी अरब के फला डॉक्टर ने। तो आप बताते ये, आप बताएं अगर वो ये कर रहे होते तो ये रिपोर्टें होती? अरे भाई बोल लो ना यार, ये रिपोर्टें होती? ये रिपोर्टें इसलिए नहीं थी कि उन्होंने बोला खुराक में नेचर को फॉलो करना है, जिद्दत को फॉलो नहीं करना। जिद्दत डब्बा है और नेचर भैंस और गाय का ताजा दूध है। जिद्दत डालडा है, डालडा कंपनी ना केस कर दे, डालडा जो भी केस जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं ना नेचुरल देसी बोल लेना भाई क्या हो गया, देसी घी है। अगर आप देसी घी खा के बैठे होते तो मुझे बार बार ये बोलने की जरूरत ना पड़ती कि बोलें, आप खुद आप में इतना करंट होता कि आप बढ़ चढ़ के बोल रहे होते। तो देखो मेरा मकसद इन वाकयात से वाकयात सुनाना नहीं है, मेरा मकसद ये बताना है कि जैसे सेहत के मामले में नेचर से इंसान बगावत करे तो सेहतमंद नहीं रह सकता, तो जैसे मादी सेहत में इस तरह मेंटली सेहत जिसको हम सुकून और इत्मीनान कहते हैं उसमें भी अगर फितरत से बगावत करोगे तो कभी भी सुकून नहीं मिलेगा। अब फर्क किया है मादी सेहत में और रूहानी और मेंटली सेहत में? फर्क यह है कि मादी सेहत का तायुन करने में ज्यादा टेंशन नहीं होती, पता चल जाता है, अल्लाह ने खुद ही इंसान को बता दिया है ये खाओ ये नहीं, हमेशा से खाते आ रहे हैं ना लोग क्या खाना है क्या नहीं खाना। लेकिन ये जो सेहत जो हमारी रूहानी जिंदगी के लिए और मेंटली हेल्थ के लिए जरूरी है, ये पैगंबरों के बताए बगैर खुद से इंसान समझ नहीं सकता, खुद से नहीं फैसला कर सकता कि सही क्या है गलत क्या है। अगर इंसान की अकल पे डाल दिया जाए ना तो क्यामत तक यही फैसला नहीं कर सकता कि जिना अच्छी चीज है या निकाह अच्छी चीज है, अगर अकल पे फैसला कर दिया जाए। अगर अकल पे डाल दिया जाए उसको नहीं पता चलेगा कि मां बाप घर में रखने की चीज है या ओल्ड हाउस में जमा कराने की चीज है, ये डिबेट होगी और ये मतलब पेंडिंग में चला जाएगा। अकल नहीं फैसला कर सकती कि शराब बुरी चीज है या अच्छी चीज है। आप दलाई के अंबार लगा दें, एक शख्स कहेगा बुरी चीज है पी के नशा आता है, दूसरा कहेगा यही तो अच्छा ही है कि पी के नशा आता है, यही तो अच्छा ही है नशा आता है आदमी गमों को भूल जाता है, तो जो चीज गम भुला रही है बुरी कैसे हो सकती है। आप उस पर डिबेट करके समझाएं कि भाई अगर नशा देखो कतल हो जाते हैं तो भाई इतना कहते हैं फिर लिमिट में पियो ज्यादा मत पियो, कानून साजी होनी चाहिए। बीसियों दलाइल दिए जा सकते हैं शराब को लीगल करने के, अच्छा करार देने के। अगर इंसानों पर डाल दिया जाए, आजकल होमोसेक्सुअलिटी की पूरी दुनिया में तहरीकें चल रही है ना, 1990 तक अमेरिका में इसको नफसियाती बीमारी समझा जाता था, दिमागी बीमारी है, ये पागल है वो आदमी जो इन चीजों में पड़ता है। आज उसको दुनिया क्या कह रही है, मोटिवेट कर रही है, जायज है भाई। तो अकल नहीं फैसला कर सकती हर चीज में, नहीं कुछ चीजों में तो कर सकती है, हर चीज में अकल फैसला नहीं कर सकती। तो अल्लाह ने इंसानों को इंसानों की अकल पे नहीं छोड़ा है, अल्लाह ने पैगंबरों को दुनिया में भेजा है जो इनको ये बताएंगे ये नेचुरल है और ये नेचुरल नहीं है, ये फितरत है ये गैर फितरी है, ताकि लोग अपनी अकल का गलत इस्तेमाल करके, क्योंकि इंसान जब अकल इस्तेमाल करता है उसमें बाज दफा उसकी ख्वाहिशात का गलबा होता है, ख्वाहिशात उसको गलत रुख पे लेके जा रही होती हैं। मिसाल के तौर पर कुछ लोग कराची में पाइप के अंदर बैठे हुए सुट्टा लगा रहे हैं, हीरोइन पी रहे हैं, गंदे मैले कपड़े, कोई वहां पड़ा हुआ है कोई वहां पड़ा हुआ है। अकल क्या कहती है देखते ही फौरन कि भाई ये चीज पीने की नहीं है, लेकिन ख्वाहिशात इंसान की अकल पर गालिब आती है। अगर अकल काफी होती तो फिर हर हीरोइनची को उसकी अकल ने क्यों नहीं रोका, ये क्यों पड़े हुए पाइप के अंदर हीरोइन पी पी के मर रहे हैं? वजह क्या है कि इनकी ख्वाहिशात ने इनकी अकल को बेवकूफ बनाया। इन्होंने कहा यार दो चार सुट्टे लगाने से कुछ नहीं होता, या कोई गम इनको दुनिया में आए इन्होंने कहा कि पी लेंगे तो वो गम क्या हो जाएंगे। हालांकि अल्लाह ने गम का जो इलाज बताया है वो सुट्टे या शराब नहीं बताया, अल्लाह ने ये बताया कि मुसाफिर खाना है, कभी बस में इंसान लटक के चला जाता है और कभी उसको अच्छी सीट मिल जाती है, सफर की टेंशनों को बड़ी टेंशन नहीं समझा जाता, ये अल्लाह ने गम का इलाज बताया। आप गम का इलाज तलाश कर रहे हो अय्याशी में खुदकुशी में और नफसियाती डॉक्टरों के पास तलाश कर रहे हो, हमारे पास वो खुद नफसियाती डॉक्टर आए हैं, ऐसी ऐसी टेंशन है उनको, कह रहे हैं यार हम लोगों का काउंसलिंग करते थे आज खुद डिप्रेशन में गए थे हम, क्योंकि जो दुनिया को मुसाफिर खाना नहीं समझेगा मेरे भाई उसके पास कोई गोली नहीं है जो आपकी डिप्रेशन, वो वक्ती तौर पर तो हो जाएगा फायदा ना, हकीकत में कोई इलाज नहीं है उसके पास। तो क्या कह रहा था मैं वो बात ही दिमाग से निकली, एक मिसाल नहीं नहीं वो भी एक मिसाल, वो एक मिसाल दे रहा था मैं, इधर को कैसे पलट गया
चलो मुफ्ती से काजी साहब
नहीं वो तो पुराना किस्सा हो गया ना, वो तो बुजुर्ग आए थे कमर झुकी हुई थी, वो तो मैंने खजूर के फजाइल बता रहा था आपके सामने। तो खैर तो जब तक ये डिप्रेशन और हाँ मैं ये कह रहा था कि इस्लाम ने जो आपको बताया है वो नेचुरल है। हाँ मैं हीरोइनचियों की मिसाल दे रहा था, हीरोइनचियों में ऐसा खो गया था ना मैं कि वो भूल ही गया मैं क्योंकि हमारे यहाँ हीरोइनची अल्हम्दुलिल्लाह बहुत है बहुत है। तो अब आप क्या करोगे अगर आप अकल से फैस, वो हीरोइनची को जब पता था कि उसने बहुत से हीरोइनचियों का अंजाम देखा है ना, फिर भी क्यों जा रहा है? शहवात और ख्वाहिशात क्या करती है, इंसान की अकल को कैप्चर कर लेती है। दुनिया यही, दुनिया में यही हो रहा है। होमोसेक्सुअलिटी क्यों आम हो रही है, इसलिए कि जो इस बुराई में पड़ गए अब उनको बजाय इसके कि अकल इस्तेमाल करके इस बुराई को छोड़े तो ख्वाहिशात नहीं छोड़ने देती, उन्होंने इसी को क्या कर दिया लीगल। हर बुराई के पीछे ख्वाहिशात होती हैं जो आपको मिसगाइड करके अंधेरों में डाल। खुदकुशी करने वाला खुदकुशी क्यों करता है, उसकी भी तो अकल कह रही है कि यार इतनी टेंशन में रहने का फायदा क्या, और जाके अपनी जो जिंदगी जो सबसे बड़ी नेमत है जिसको बचाने के लिए करोड़ों अरबों रुपए लोग खर्च कर देते हैं, वो अपने हाथ से उस जिंदगी को तबाह कर रहा होता है, अपने हाथ से बर्बाद कर रहा होता है। तो इसलिए अल्लाह ने इंसानों पर रहम किया, अल्लाह ने इंसानों को पैदा करके इंसानों की अकल के हवाले नहीं किया। ये नहीं कहा कि बेअकल बन जाओ, ना ना ना, अल्लाह ने अकल को सही रहनुमाई दी कि अकल इन उसूलों की रोशनी में इस्तेमाल होगी, क्योंकि इस्लाम जितना अकल इस्तेमाल करने का हुक्म देता है ना, इतना कोई मजहब अकल इस्तेमाल करने का हुक्म नहीं देता, लेकिन इस्लाम उस अकल को में रहनुमाई करता है कि गलत से ये ख्वाहिशात से मगलूब ना हो जाए। तभी कुरान ने कहा अफराइता मन इत्तखदा इलाहहु हवाहु, भला उस शख्स को देखा जिसने अपनी ख्वाहिशात को माबूद बना लिया, जो ख्वाहिशात को पहले रखता है अकल को बाद में रखता है। तो अल्लाह ताला ने हमें बताया कि भाई देखो मैंने तुम्हें जितनी सलाहियतें दी हैं उनमें कोई सलाहियत लामहदूद नहीं है, तमाम सलाहियतें महदूद हैं। अब उन सलाहियतों से फायदा ना उठाना भी जुल्म, और अपनी औकात से ज्यादा उनसे फायदा उठाने की कोशिश करना भी क्या है, जुल्म है। मिसाल के तौर पर अल्लाह ने हमें आंख से देखने की सलाहियत दी या हाथों से वजन उठाने की सलाहियत दी, अब हम कोई चीज उठा ही नहीं रहे हैं हाथ से, यह भी जुल्म है या नहीं है? रोटी का निवाला भी नहीं उठा रहे हम, और ये समझ रहे हैं कि इससे हमारे हाथ में ताकत आ जाएगी, हमारी एनर्जी स्टोर हो जाएगी। भाई ऐसा कुछ भी नहीं होगा, हाथ जो है रोटी उठाओ वजन उठाओ जहां जरूरत की चीज है वहां हाथों को इस्तेमाल करना पड़ेगा। लेकिन आपने क्या किया, आपने कहा चूंकि मैं अपने हाथ से 10 किलो वेट उठा सकता हूं लिहाजा मैं अब इससे पूरा ये जो इन्होंने वो बनाया है ना पूरा जो पुल बनाया है समंदर के ऊपर मैं जाऊंगा और एक हाथ से ऊपर उठा लूंगा, तो लोग क्या कहेंगे, भाई ये पी के आ गया आज तू, लगता है ज्यादा पी लिया तूने। जब इंसान पीता है तो इस तरह की बातें करता है। आप देखते हो अल्लाह ने देखने की सलाहियत दी, एक आदमी कहता है मैं यहां से बैठे बैठे दीवार के पीछे देख के बताऊंगा, तो लोग क्या कहते हैं, भाई देखने का मतलब ये, वो कह रहे मेरी नजर चूंकि 6x6 है लिहाजा मैं तीसरा आसमान देख के बता रहा हूं कि कहां है वो, तो लोग क्या कहेंगे, भाई 6x6 का मतलब भी क्या है, महदूद है, इतनी नहीं हो सकती कि आप एक लिमिट को क्रॉस कर जाओ। तो मुझे एक बात बताओ, जब सारी सलाहियतें महदूद हैं, लोगों का खाने में मुकाबला होता है, इतनी रोटियां खा गया वो इतनी रोटियां खा गया, तो जितनी भी खा जाए एक टाइम पे आके उसको बस करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपके मेदे में स्पेस महदूद है या लामहदूद है या महदूद है, तो महदूद है। तो मुझे एक बात बताओ, ये कैसे हो सकता है कि अकल को जो अल्लाह ने सलाहियत दी वो लामहदूद देती हो, वो सब कुछ सही सही फैसला कर देती है, जब भी फैसला करने बैठेगी हमेशा सही फैसला करेगी, ये हो सकता है क्या? हर चीज में गाइड कर रही है, जिनके पास मजहब नहीं है इस्लाम नहीं है वो सही और गलत का भी इसको सीधा कर दें, जिनके पास मजहब नहीं है इस्लाम नहीं है वो हर चीज में सही गलत का फैसला किससे करते हैं, मैं इशारा करके भी बता रहा हूं फिर भी आवाज नहीं आ रही, दिमाग से करते हैं ना, अकल से करते हैं हर चीज में। उनसे पूछा जाए ये सही है गलत है, कहते हैं अकल से फैसला करते हैं। कैसे मुमकिन है कि हर चीज में हर जगह इंसान अकल इस्तेमाल करे? इसकी मिसाल ऐसे जैसे हमारे पाकिस्तान में कुछ स्कॉलर ऐसे आ रहे हैं, मजहब के बारे में पूछो रिपोर्ट पेश करेंगे, इमरान खान के बारे में पूछो रिपोर्ट पेश करेंगे, फौज के बारे में पूछो पूरी पूरी रिपोर्टें पेश करेंगे, नवाज शरीफ के बारे में पूछो पूरी रिपोर्ट पेश करेंगे, फिर अमेरिका के बारे में पूछो उनको पता है, जापान के बारे में पूछो उनको पता है, सेहत के बारे में टिप उनसे पूछो उनको पता है। तो आदमी क्या कहता है, अबे ये क्या तू मां के पेट से कोई बड़ा आलिम बन के पैदा हुआ था? पाकिस्तान में हर आदमी को सब कुछ पता है या नहीं पता, मुझे बताओ। कभी कोई ये नहीं कहेगा कि ये मेरा शोभा नहीं है, इसके बारे में मुझे नहीं पता। हर आदमी को दुनिया की हर चीज पता है पाकिस्तान में। तो उसूल ये है कि जिस शख्स को सब कुछ पता है ना, ये इसकी अलामत है, इसको कुछ भी नहीं पता। आप देख लो ना, कोई हकीम होगा तो कैंसर का भी पता है उसको, ब्लड प्रेशर का भी पता है उसको, गुर्दों की पथरी का भी उसको पता है, घुटनों का भी उसको पता है, सर पे बाल कैसे उगेंगे उसको भी। कोई डॉक्टर होगा तो वो भी सारी चीजों का उसको सब कुछ पता है। एक यूट्यूब पे बड़े मशहूर डॉक्टर है, उनको सब चीजों के बारे में रिपोर्ट है ना। मैं बड़ा इंस्पायर था उनसे, बड़ा सुनता था, मैंने कहा यार इस बंदे की रिसर्च। तो मैंने एक डॉक्टर उनसे भी बड़े उनसे रब्ता किया, उन्होंने कहा भाई इसको किसी चीज का भी कुछ नहीं पता नहीं है, लेकिन जिसको सब कुछ पता है ना, इतनी उम्र इंसान की नहीं है कि वो हर शोबे में स्पेशलिस्ट बन जाए। किसी चीज में स्पेशलाइजेशन होती है तो दूसरी चीजों में नक्स और कमी पैदा हो जाती है। हमारे यहां देखें जो डॉक्टर है वो कुरान की तफसीर लिख रहा है बैठ के, अबे भाई तेरा शोभा मेडिकल साइंस है, कुरान की तफसील लिखने के लिए तो बहुत गहरा इल्म चाहिए, और जो मुफस्सिर है, जो आलिम मुफ्ती है, वो लोगों को सेहत के टोटके बता रहा होगा बैठ के। मुझसे अक्सर लोग जब COVID-19 आया ना तो पूछा करते थे, मुफ्ती साहब ये कोरोना जो है ये ओरिजिनल है या नहीं है? तो मैं कहता था मेरी फील्ड COVID-19 या कोरोना नहीं है। वो कहते थे मुफ्ती साहब एक बहुत बड़े बुजुर्ग हैं आलिम है, उन्होंने कहा कि सब ड्रामा है। तो मैं कहता था मेरे भाई कोरोना ये बीमारी है, ये फील्ड मुफ्तियों की नहीं है, ये फील्ड किसकी है? डॉक्टरों की है। सारी दुनिया के सारे डॉक्टर कह रहे हैं कि ड्रामा नहीं है ये, बेशक वो वायरस किसी ने बनाया हो नहीं बनाया एक अलग टॉपिक है, लेकिन वायरस है, बीमार डॉक्टर मर रहे हैं, कह रहे नहीं फला मुफ्ती साहब कह रहे हैं। तो मैंने कहा फिर तलाक का मसला डॉक्टरों से पूछा करो, तलाक के मसाइल जाके कहावा खान के स्पेशलिस्ट के पास जाओ कि मैंने बीवी को ये अल्फाज बोले तलाक हो गए कि नहीं हो गए। डॉक्टर कह गए तेरा दिमाग खराब हो गया, मुझसे पूछे गुर्दे में पथरी हो गई कि नहीं हो गई है। तो बिल्कुल यही ऐसे है जैसे गुर्दे के बारे में आप मुफ्तियों से पूछ रहे हो, और मुफ्तियों के बारे में आप किससे पूछ रहे हो? डॉक्टरों से। तो ये पाकिस्तान में है कि अल्हम्दुलिल्लाह हर शख्स हर फील्ड में क्या है, स्पेशलिस्ट है, उसके बगैर मंजन बिकता नहीं है मार्केट में। तो मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूं, बस बात को जल्दी से समेट के खत्म करता हूं, कि देखो अकल इतनी पावरफुल नहीं है कि सब कुछ आपको कौन बताएगा, अकल बताएगी। तो आपको कहीं ना कहीं एक इस्लाम ने एहसान हम पर क्या किया है, ना तो यह कहा कि अकल इस्तेमाल ना करो, क्योंकि दुनिया में जो मजहबी लोग होते हैं अक्सर अकल लेस होते हैं, वो कितने भी मजाहिब आप देख लो वो अकल का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करते। कुरान ने क्या कहा कि तुम इन पत्थरों के बने हुए बुतों के सामने झुकते हो, अफला ताकिलून, अकल से काम क्यों नहीं लेते? अगर कुरान हमें अकल इस्तेमाल करने से रोकता तो बार बार ये कहता अफला ताकिलून, अकल से काम क्यों नहीं लेते? मतलब कुरान अकल से काम लेने का हुक्म दे रहा है कि जिन पत्थरों को अपने हाथ से बनाते हो तुम इनके खालिक हो, इनको क्रिएटर कैसे मान रहे हो, तुम इनके सामने झुक कैसे रहे हो तुम? फिर कुरान जगह जगह हमें हुक्म देता है कि अगर मैंने इस कायनात को बेमकसद बनाया है, तुम्हें मौत के बाद दोबारा जिंदगी नहीं देनी, इसका मतलब जुर्म करने वाले और नेकी करने वाले सब क्या है, बराबर है, तो तुम्हें क्या हो गया, कैसी बेअकली की बातें कर रहे हो? अमना जाल मुत्तकीन अकल फुजार, जो नेक लोग हैं बुरे लोग हैं मैं मार के मिट्टी करके खत्म कर दूंगा, तो ये तो मेरे ऊपर इल्जाम है। देखो दुनिया की कोई गवर्नमेंट ऐसी नहीं है जो लॉ पे चलने वाले और लॉ को तोड़ने वाले दोनों के साथ सेम सलूक करे, है कोई दुनिया की ऐसी गवर्नमेंट कि भाई जो भी बस जो मर्जी करना है करो अंजाम सबका सेम होगा? ना ना ना, जुर्म की हैसियत से सजाएं बढ़ती चली जाती है। तो अल्लाह कह रहा है कि जब दुनिया की गवर्नमेंट ये काम नहीं करती, मैंने अगर मार के मिट्टी करके खत्म करना था, दोबारा जिंदगी दे के हिसाबो किताब नहीं लेना, तो इस दुनिया में तो हजारों इंसानों के कत्ल करने वाले भी होते हैं और हजारों इंसानों की जाने बचाने वाले भी होते हैं। इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने मोहसिनीन माँ बाप को गला घोंट के जान से मार दिया थोड़ी सी विरासत की खातिर, और ऐसे भी हैं जो बूढ़े माँ बाप के कदमों में हमेशा जन्नत तलाश करते रहे। दुनिया थोड़ी उनको सिला देती है, वो देती है दुनिया उनको सिला। इस दुनिया में ऐसे भी हैं, हमारे मुल्कों में तो बहुत इस तरह के लोग भी हैं, गरीबों के मुंह से निवाले छीन छीन के उनको खा गए, लाखों लोगों के मौत का जरिया बने गुर्बत महंगाई करके, और खरबों रुपए की जायदादें बना ली, उनका पेट भर के ही नहीं दे रहा, क्या दुनिया में सजा मिलती है? और ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपना पेट काट के हजारों को खाना खिलाया, उनका पेट भरा, ऐसी कुर्बानी देने वाले भी आपको हमारे ही मुल्कों में मिलेंगे। हर तरह के लोग हर जगह होते हैं। तो ये क्या बात है कि जो लाखों लोगों से निवाला जिसने छीन लिया वो भी मर के मिट्टी होके खत्म, और जिसने अपना पेट काट के हजारों लाखों को खिलाया वो भी मर के मिट्टी होके खत्म, ना उसको अच्छाई का सिला मिला ना इसको बुराई का बदला मिला। तो दुनिया की गवर्नमेंट में तो इस धांधली का चांस है जिस खुदा ने इस कायनात को बनाया। अल्लाह कहता है ज़ालिका ज़न्नुल्लज़ीना कफ़रू, ये इल्जाम मुझ पे वो लोग लगाते हैं जो मेरा इंकार करते हैं, ऐसा इल्जाम लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं, उनको सजा मिलेगी कि मुझे इतना करप्ट कैसे करार दे दिया इन्होंने। तो ये अल्लाह हमसे अकल इस्तेमाल करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे? बोलते क्यों नहीं भाई, करवा रहे हैं। इन फी खल्क समावाती वल अर्ज़ी वख्तिलाफ अल-लैल वन-नहारी लआयातिल लिउलिल अलबाब, अल्लाह कहते हैं आसमानों और जमीनों की पैदाइश में और दिन और रात के छोटे और बड़े होने में और सूरज और चांद की गर्दिशों में अकल मंदों के लिए बड़ी बड़ी निशानियां हैं। क्या मतलब उन लोगों के लिए जो अपनी अकल का इस्तेमाल करते हैं, ये अकल उनको कहेगी कि ये खुद नहीं बने बल्कि इनको किसी ने बनाया है, कोई क्रिएटर है। तो कुरान जितना अकल के इस्तेमाल का हुक्म दे रहा है, इतना दुनिया का कोई मजहब अकल के इस्तेमाल का हुक्म नहीं देता, बल्कि वो अकल के इस्तेमाल से रोकते हैं आपको। उनको पता है अकल इस्तेमाल की तो मजहब को छोड़ देंगे ये लोग। जबकि कुरान गैर मुस्लिम को इस्लाम की तरफ लाने के लिए अकल के भरपूर इस्तेमाल का हुक्म दे रहा है। यहां तक बात समझ में आ गई? मुझे लग रहा है बहुत से लोगों को उर्दू नहीं आती, जो मुझे बड़े घूर घूर के देख रहे हैं, कोई चेहरे से उनके तासुरात ही नहीं है, तो उनको कोई बात में तर्जमा करके बता दे भाई। अच्छा, यहां उर्दू स्पीकिंग मैंने देखा पश्तो बोल रहे हैं, ये कराची के किमाड़ी के हैं, ये पश्तो बोल रहे हैं। तो मैंने कहा आप उर्दू स्पीकिंग ने पश्तो कैसे? कह रहे सर रहते ही सारे पठानों में हूं मैं, कह रहे मैं तो सारे पश्तो वालों में ही रह रहा हूं, कमाल हो गया। तो जितने इस्लाम के अलावा मजाहिब है ना, वो आपको कहते हैं अकल इस्तेमाल ना करो। हत्ता के जो मुल्हिद और एथियस्ट है ना, मैं कसम उठा के बोलता हूं वो भी अकल इस्तेमाल नहीं करने देता आपको, कहते अकल से मत सोचो। जो मैं कह रहा हूं वो लेबल लगाएगा कि अकल इस्तेमाल करो, साइंस कहती है खुदा नहीं है, हालांकि साइंस कहती नहीं है कि खुदा, साइंस इससे खामोश है कि खुदा है या नहीं है। न्यूटन कितना बड़ा साइंसदान था ना, वो खुदा का मोतरिफ था। आइंस्टाइन कितना बड़ा साइंटिस्ट था, वो खुदा का मोतरिफ था। हत्ता के डार्विन खुदा के वजूद को मानता था, डार्विन तक खुदा के वजूद को मानता। अब ये टॉपिक नहीं है, मैं अभी इसमें नहीं पढ़ता, लेकिन अकल अगर आप इस्तेमाल करें तो अकल कहेगी कि खुदा का वजूद है। ये कमबख्त अकल का इस्तेमाल करते नहीं है, क्यों? इसलिए कि इस कायनात में चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं होती, तो क्रिएटर के बगैर क्रिएशन कैसे हो गई? क्रिएशन ज्यादा मुश्किल है या चेंजिंग ज्यादा मुश्किल है? ये तो साइंस का उसूल है भाई, और मुशाहिदे पर मबनी है। साइंसदानों ने ना भी कहा होता है तो हमें नजर आ रहा है। बात चीजें तो ऐसी साइंसी थ्योरी होती है। न्यूटन ने अगर ये ना कहा होता कि सेब ऊपर से नीचे आता है, तो हम क्या ये कहते कि नीचे से ऊपर जाता है? बोलते क्यों नहीं यार? एक तो आप लोग बहुत जापान के लोग ठंडे मीठे बहुत है ना, ठंडे मीठे बहुत है। यहां आपको भी ठंड पै गई है, आप लोगों में भी आके यहां बहुत ठंड, ना लड़ते हो ना गालियां देते हो, पता नहीं क्या हो गया आप लोगों में। अभी तक कोई गाली नहीं सुनी मैंने। उस दिन उनका बड्डा हो रहा था इरशाद भाई का, तो ये गाली स्किप कर गए, हालांकि मुझे पता था बहुत जोर की गाली आ रही है इनको, फोन पे बड्डा हो रहा था, लेकिन जापान के तकद्दुस में गाली क्या कर गए स्किप। वरना ये पिशावर में होते बनती थी, यहां पे बीच में एक बनती थी, कराची में, पिशावर में होते, पंजाब में होते, पंजाब में होते तो तीन बनती। तो बहुत ठंडे मीठे हो गए आप लोग। तो अच्छा है, ऐसे ही होना चाहिए भाई, क्योंकि मैं बुराई में नहीं कह रहा। तो चेंजर के बगैर चेंजिंग नहीं हो सकती, तो क्रिएशन का अमल तो भाई चेंजिंग से बड़ा अमल है, वो क्रिएटर के बगैर कैसे हो गया? और वो फजूल किस्म का इश्काल कि जब इस कायनात को किसी ने बनाया तो बनाने वाले को किसने बनाया? भाई वो हमेशा से है। हम मादी चीजों के बारे में तो बहस कर सकते हैं जो बनी हुई हैं, उनके तो हमने देखा है कि उनमें चेंजिंग चेंजर के बगैर नहीं हो सकती। क्रिएटर कोई मादी चीज थोड़ी है, उसका तो वो हमारी अकल से क्या है, बालातर है। तो खैर, तो इस्लाम आपको क्या हुक्म देता है? जगह जगह अकल को इस्तेमाल करो। लेकिन इस्लाम ने भी बताया कि अकल है महदूद, लामहदूद चीजों में तुम्हें गाइड नहीं। हर चीज तुम्हारी खोपड़ी में कुछ मैं बताऊंगा तुम्हें, क्योंकि मैं तुमसे ज्यादा जानने वाला हूं, मेरा इल्म तुमसे ज्यादा है, मेरी सलाहियत लामहदूद है। इसलिए अल्लाह कहता है अगर इंसानों पे छोड़ देता ना कि अच्छे बुरे का भी हर चीज में खुद से फैसला करो, तो वही होता जो हो रहा है। वो एक मजाहिया एक्टर का चुटकुला बचपन में सुना था कि बड़े कराची के किसी बड़े इलाके में ना, पोश इलाके में, डिफेंस में किसी की मैयत हो गई, तो अब जरा एडवांस किस्म के लोग हैं, तो लोग गुलकारों में किसी की मैयत हुई है, किसी गाने बजाने डांसर की मैयत हो गई ना, तो सारे डांसर आए हुए और नाच गा के जो है ना वो ताजियत कर रहे। तो माइकल जैक्सन भी आया इसी सिलसिले में, ऐसी किसी ने चुटकुला बचपन में सुना था। तो माइकल जैक्सन भी ना, बड़ा वो तो अलग ही स्टाइल से नाचता है, वो तो देसी लोग उस तरह से नाच सकते ही नहीं है। तो माइकल जैक्सन नाच नाच के पूछता भाई क्या हुआ था, ये कैसे मर गया? तो उसने कहा था वही हुआ था जो तुझे हो रहा है। अपनी जगह टिक्के खड़ा हुआ नहीं था, हिल रहा था, कढ़ाई में गिर गई। वही हुआ था जो किसे हो रहा है, तुझे हो रहा है। ज्यादा हिल गया था जो मरहूम है ना उसकी बात तो कढ़ाई में गिर गया था मर गया, इसलिए आराम से बैठ जा वरना ये पाकिस्तान है, यहाँ नाचना आसान काम, कढ़ाई में गिर जाते हैं लोग नाच के, वहां तो पूरा एक स्टेज सजाया जाता है ना अमेरिका में, गिरे नहीं कोई ये ना हो हमारा क्या भरोसा है भाई। तो मैं वो पता नहीं किससे चुटकुला सुनाया मैंने, खैर तो अकल क्या करेगी भाई, एक हद तक आपको जब आप अकल का अपनी औकात से ज्यादा इस्तेमाल करना शुरू कर दोगे हाँ तो वही होगा जो सोसाइटी में हो रहा है। होमोसेक्सुअलिटी को लोग क्या करेंगे लीगल, जो जानवर भी जो काम नहीं करते, जिना फैलेगा सोसाइटी में और फिर फैमिली प्लानिंग वाले अपनी अकल इस्तेमाल कर करके आपको बोलेंगे बच्चे रोको गुर्बत महंगाई बढ़ रही है, फिर वही होगा कि आप बुढ़ापे में कुत्ते लेके घूमोगे अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए, चचा मामू खाला फुप्पी लोग मुझसे ये सेकुलर लोग सेकुलर तबका पाकिस्तान में इश्काल करता है कि भाई हम बच्चे खत्म करने का थोड़ी कह रहे हैं कि कुत्ते पाले, हम कह रहे हैं बच्चे इतने ही नहीं, ये 16 गलत है। अब मेरे बारे में रिपोर्ट ये है कि 16 बच्चे हैं ना, तो ये गलत है, ये क्या ये तकिया नूसी, ये गुर्बत महंगाई, पाकिस्तान की आबादी 24 करोड़ होने वाली है 2030 में 30 करोड़ हो जाएगी, कहां से खाएंगे कहां से खिलाओगे इनको। ये वो अकल है जो अपनी लिमिट को क्या कर रही है क्रॉस, और कमबख्त इस्तेमाल भी सही नहीं हो रही। किसी भी इलाके में जब ये कहा जाता है ना आबादी ज्यादा है, देखो किसी घर में किसी हॉल में अफराद ज्यादा है, क्या मतलब हॉल की लंबाई पहले आपने की हुई हो, चौड़ाई आपके पास हो, वो कैलकुलेशन हो, फिर आप बोलो कि इसमें अफराद, एक बड़े हॉल में 100 अफराद कम है, एक छोटे कमरे में 50 अफराद भी ज्यादा है, तो ये अजीब बात है 24 करोड़ और 30 करोड़, पहले आप वसाइल को नापो, स्पेस को बताओ। बलूचिस्तान ही इतना बड़ा है ना पाकिस्तान में कि पूरा मुल्क अकेले बलूचिस्तान में भी इतने मजे से समा सकता है कि अकेला बलूचिस्तान पूरे पाकिस्तान को पाल सकता है, स्पेस इतनी और वसाइल कितने हैं। वो एक हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज का बयान आया कि इतने लाख गैलन पानी जमीन से रोजाना निकल रहा है, पानी जो है ना कम हो रहा है। मैंने कहा यार ये अजीब कैलकुलेशन है, पहले ये बताओ जा कितना रहा है, कितना गैलन जा रहा है और कितना उसमें से निकल रहा है। एक जगह अगर पानी की सतह कम हो रही है तो दूसरी जगह क्या हो रही है, बढ़ रही है। ये ऊट पटांग किस्म की तो कैलकुलेशन है। तो जब अकल अल्लाह की मर्जी के खिलाफ इस्तेमाल होती है ना, कुरान ने किया नस्ल रोकने का हुक्म, गुर्बत महंगाई के खौफ से हमें नस्ल रोकने से कुरान ने मना किया, कुरान ने कहा नहनु नरज़ुकुकुम, ये कैलकुलेशन मेरी है, कद्दर फीहा अक़वाताहा, जमीन बनाने से पहले मैंने कद्दर का मतलब मैनेजमेंट कर चुका हूं कि कितने इंसान दुनिया में आ सकते हैं, कितनी स्पीड से आबादी बढ़ेगी, कद्दर कहते हैं मैनेजमेंट को अरबी में, ये सारी मैनेजमेंट कैलकुलेशन अल्लाह पहले से ऐसे ही देखो, जो खुद ब खुद कहते हैं ना पैदा हो गया वो तो डरते रहेंगे, जो कह रहे हैं खुद नहीं हो रहा भाई, अल्लाह का एक निजाम है और पूरी कैलकुलेशन पहले से तयशुदा है। अल्लाह को पता था एक दिन जमीन में पेट्रोल भी दरियाफ्त होगा, डीजल भी। अगर हम 300 साल पहले आबादी की ग्रोथ को और उस रेशो को देखें तो आज इंसान को कहत से हलाक होकर खत्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि गधे घोड़ों में सफर होता। तो अल्लाह के इल्म पहले से है कि जब आबादी बढ़ेगी तो जमीन भी खुदेगी और जमीन से डीजल पेट्रोल के कुएं निकलेंगे, फिर जब पेट्रोल खत्म होना शुरू होगा तो सोलर प्लेटें ईजाद हो जाएंगी, तो सब कुछ अल्लाह को पता है। ये कैसे आप पहले से फैसला कर सकते हो? तो अकल गलत इस्तेमाल की तो आज उसके असरात इस सोसाइटी में देख लो आप, इतने अच्छे होके भी बुढ़ापा कैसे गुजर रहा है। जब इंसान को अफराद चाहिए, असल में तो आपको जवानी में बंदे नहीं चाहिए, असल में चाहिए बुढ़ापे में। तो हमारे गरीब मुल्कों का जो बूढ़ा आदमी है खुदा की कसम वो ज्यादा मजे की जिंदगी गुजार रहा होता है, और पढ़े लिखे इलाकों का जो बूढ़ा आदमी है उसकी जिंदगी ऐसी कि तैसी हो चुकी होती है उसकी जिंदगी की। क्यों? उसने अपनी अकल को अल्लाह की अकल से आगे बढ़ाने की कोशिश की है। मैं जो शादियों की रट लगा रहा हूं ना, वजह क्या है? गैर मुस्लिम और हमारा जो मुसलमानों में सेकुलर तबका है वो इस्लाम की दावत से 180 डिग्री पर है। वो कहता है देर से निकाह करो, बच्चे भी कितने, एक या दो, और जो और आगे लिबरलिज्म में गए हुए हैं सेकुलरिज्म में गए हैं वो कहते हैं करो ही नहीं शादी, टेंशन नहीं। इस्लाम बिल्कुल उसके क्या है, बिल्कुल अपोजिट, क्योंकि इस्लाम इस देश ही को गलत करार देता है कि इससे गुर्बत बढ़ेगी, महंगाई बढ़ेगी और तुम्हारी टेंशनें बढ़ेगी। इस्लाम क्योंकि दीन फितरत है, इस्लाम ने क्या कहा, जअललकुम मिन अनफुसिकुम अज़वाजल लितस्कुनू इलैहा, अल्लाह ने मर्द की जिंस औरत पैदा की ताकि दोनों के मिलाप से इसको सुकून हासिल हो। तो अल्लाह ने बता दिया औरत टेंशन का जरिया नहीं है बल्कि सुकून का जरिया है। तो मर्द मर्द बनता है बालिग होने के बाद, عورت عورت بنتی ہے بالغ ہونے کے بعد. تو مرد کو سکون کے لیے عورت بلوغت کے بعد چاہیے, 50 سال میں اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے. تو دین فطرت ہے, اس لیے کہا بالغ ہوتے ہی شادی کر دو اس کی. اور بتایا کہ غیر مسلم کہیں گے یہ ٹینشن ہے, اللہ کیا کہہ رہے, ٹینشن نہیں ہے. لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا, تاکہ تمہیں بیوی سے کیا ملے, سکون. آپ دنیا میں دیکھ لو, شادیوں والے خودکشیاں کم کرتے ہیں اور وداؤٹ میرج رہنے والی قوموں میں خودکشیوں کا ریشو زیادہ ہے, حالانکہ وہ تو ٹینشن فری زندگی گزار رہے ہیں. عقل تو کہے گی کہ یار ایک شادی ہوگی تو ایک سالہ بھی ہوگا, فل ٹینشن, سسر بھی ہوگا فل ٹینشن, اور ساس ٹینشن کا دوسرا نام ہے. آپ ڈکشنری میں دیکھیں تو ٹینشن از اکول ٹو, یا آگے ترجمے میں ساس لکھا ہوا ہوگا. عقل تو یہ جو وہ عقل جو اللہ رسول کی تعلیمات کے خلاف جو ہے نا وہ زیادہ فری ہونے کی کوشش کر رہی ہے, اپنی اوقات سے باہر نکل رہی ہے, وہ عقل تو یہی کہتی ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ جن قوموں میں زیادہ نکاح کا رواج, بر وقت شادیوں کا رواج, خدا کی قسم وہ خوش ہیں, وہ غربت مہنگائی میں بھی خوش ہیں. کیوں؟ انسان صدیوں پہلے جو اس کی مینٹلی صحت کے لیے جو چیزیں ضروری تھی, صدیوں بعد بھی اور آج سے 1000 سال بعد بھی وہی چیزیں اس کو مینٹلی طور پر مینٹلی ہیلتھ کا ذریعہ بنیں گی. اس میں بیوی بھی ہے اور بچے بھی ہیں. میں جاپان کب سے گھوم رہا ہوں, 3-4 دن ہو گئے مجھے گھومتے ہوئے. میں نے آج اپنی بچی کی, میرے گھر والوں نے تھوڑی سی ویڈیو بھیجی, خدا کی قسم اس کو دیکھ کے جو مزہ آیا نا 3-4 دنوں میں جاپان میں, اب تک مجھ آیا بہت مزہ, لیکن وہ مزہ نہیں آیا. اس نے کیا کیا ہوا تھا, میری بچی نے, چھوٹی بچی نے, وہ نہیں ہوتا کفگیر, گلاس کو اوپر رکھے نا مائک بنایا ہوا ہے اس نے, ایک ڈنڈی لی ہوئی ہے, وہ بھی ڈنڈی بھی نہیں, کچن سے جا کے بڑا چمچ نکالا, چمچ کے اوپر رکھا گلاس, وہ بن گیا مائک, اس میں نظم پڑ رہی ہے. کتا یہ کر سکتا ہے؟ بولو نا یار, نہیں کر سکتا. تو جو نیچرل ہے میرے بھائی وہ کیا ہے, وہ نیچرل ہے, اس کا آلٹرنیٹ کسی کے پاس نہیں ہے. تو اسلام آپ کو نیچر پہ, زنا سے روکتا ہے, زنا میں وقتی خوشی ہے, لیکن انسان اسٹریس اور ڈپریشن میں لڑکیاں بدلنے کا شوق پیدا ہو جاتا ہے, گھریلو لائف کی ایسی کی تیسی ہو جاتی ہے اس کی. جو محبت بیوی کو ملنا چاہیے جب وہ تقسیم ہو کے لاکھوں میں جائے گی, کسی کو بھی نہیں ملے گی پھر, وہ تو محبت لیس ہو جائے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ اولاد ہے, پوتے نواسے ہیں, جعل لکم من انفسکم ازواجا وجعل لکم من ازواجکم بنین وحفدا. یہاں جاپان میں لوگ رو رہے ہیں کہ بچے نہیں ہیں, اور اللہ پوتے نواسوں کا بھی تذکرہ کر رہا ہے قرآن میں کہ اس نے تمہاری جنس کی بیویاں پیدا کی, پھر ان بیویوں سے تمہیں اولاد دی, پھر اولادوں سے اولاد دی. تو اللہ دادا اور نانا تک کی نعمت کو قرآن میں بیان کر رہا ہے. تو یہ ممکن ہے دیر سے شادی, نانا بننے کی عمر میں جو بندہ شادی کر رہا ہے وہ یہ نعمت حاصل کرے گا؟ اور سمجھو, یہ جو فیملی پلاننگ والے کہتے ہیں اولاد ٹینشن ہے ٹینشن ہے ٹینشن ہے, اگر یہ ٹینشن ہوتی تو اللہ اس کو گفٹ نہ کہتے, پینلٹی کہتے. قرآن کیا کہتا ہے, یہ حب المئی یشا اناسا, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں ہبا کرتا ہوں. ہبا آپ گوگل پہ لکھیں, انگلش میں ترجمہ آئے گا گفٹ, اردو میں آئے گا تحفہ. اللہ کہتا ہے جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں تحفے میں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹے تحفے میں دیتا ہوں, جس کو چاہتا ہوں بیٹیاں اور بیٹے دونوں کیا کر دیتا ہوں گفٹ. تو اولاد گفٹ جتنا زیادہ ملے اچھا ہے یا کم ملے اچھا ہے؟ لوگ ایک بات مجھ سے کہتے ہیں کہ یہ کیا بچے پیدا کرتے چلے جاؤ, بچے پیدا کرتے چلے جاؤ. میں یہ بچوں بچوں کو اس لیے کر رہا ہوں کہ ہمارا سیکولر طبقہ جو نا دیندار مذہبی جو مذہبی طبقہ ہے نا, وہ ہمارے سیکولر طبقے سے متاثر ہو گیا ہے, اس میں متاثر ہو, اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے تباہ کر رہے ہیں. کیونکہ اس سے بہت ساری چیزیں جڑی ہوئی ہیں. جو شادی شدہ آدمی بال بچوں والا آدمی, وہ شراب کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے, وہ زنا کے قریب جاتے ہوئے 100 دفعہ سوچتا ہے, وہ چاہتا ہے میں نمازی بنوں تاکہ میرے بچے نمازی بنے, وہ چاہتا ہے میں دین پہ چلوں تاکہ میرے بچے دین پہ. اگر آپ نے نکاح میں تاخیر کی, آپ شراب بھی پی سکتے ہو, آپ زنا کی, آپ کو کوئی ہے ہی نہیں نا جس کی تربیت آپ نے کرنی ہے, آپ مربی نہیں ہو, خود کیسے اپنی تربیت کرو گے؟ پھر آپ تنہائی میں گرل فرینڈ ہی بناؤ گے پھر میرے بھائی, پھر زنا کی طرف ہی جاؤ گے. ان اخلاقی برائیوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے اپنا خاندان ہونا چاہیے, اور بغیر خاندان کے رہنا نیچرل نہیں ہے. خاندان میں رہنا کیا ہے؟ یہ نیچرل ہے. آپ کے بھائی ہونے چاہیے, آپ کے بچوں کے بہن بھائی ہونے چاہیے. ایک آدھ بچہ پیدا کرو, بچوں کو بہن بھائیوں سے آپ محروم کرو گے. تو اب کیا ہے جو میں بات سمیٹ کے بس ختم کروں جلدی سے, کہ جب آپ نکاح کرتے ہیں آپ کے اولاد ملتی ہے آپ کو زندگی میں کیا ملتا ہے؟ سکون. کچھ ٹینشنیں ہوتی ہیں وہ تو ہر نعمت میں ہیں. تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ اتنے بچے بھیڑ بکریوں کی طرح پیدا ان کی تربیت نہیں کرنی کیا؟ تو پہلے پلاننگ کرو. کیا کرو؟ پلاننگ. پلاننگ کرو کہ اتنے ہوں گے تاکہ میں اس کو ایک کو ڈاکٹر بناؤں گا, ایک کو انجینئر بناؤں گا, ایک کو سائنسدان بناؤں گا, ایک کو یہ بناؤں گا, ایک کو. تو پہلے سے پلاننگ کرو کہ میں کتنے افورڈ کر سکتا ہوں. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ کیا کہ بغیر کسی پلاننگ کے, مجھے ایک بات بتاؤ, جو کام پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے, یہ وداؤٹ پلاننگ ہوتا ہے وہ اچھا ہوتا ہے؟ پلاننگ والا. تو کہتے ہیں یہ کیا بات ہے کہ آپ لوگ مولانا لوگ بولتے ہو کہ فیملی پلاننگ مت کرو. بھائی ہم کہتے ہیں, یہ نہیں کہتے کہ نہیں پیدا کرو, پلاننگ کے ساتھ. ایک ہو گیا, اب اس کے 18 سال کے بعد دوسرا ہوگا, یہی ان کی پلاننگ فی الحال یہی چل رہی ہے. عجیب و غریب قسم کی پلاننگ. اور پھر تیسرا ہوگا ہی نہیں. وجہ اس کی یہ کہ پلاننگ, بھائی پلاننگ, آپ کی آمدن دیکھو. پلاننگ میں ساری اصول بتائے جاتے ہیں. آپ اپنی انکم دیکھو, انکم آپ اتنی, آپ کے گھر کا فلیٹ کے افراد اسپیس اتنی, تو اس کے حساب سے اتنے افورڈ کر سکتے ہیں. بلکہ پاکستان میں تو کہا جاتا ہے ایک بھی نہ ہو غربت مہنگا مرے گا آ کے, وہ کسی کنٹینر میں نہ دب جائے کسی سیاسی جلسے کے. تو یہ بات بظاہر بڑا بہترین نعرہ ہے, یہ ہر کام پلاننگ سے ہوتا ہے, تو بچے وداؤٹ پلاننگ کیوں پیدا ہو؟ تو مجھ سے کہہ رہے تھے, میں نے کہا مجھے ایک بات بتاؤ, پلاننگ گفٹ لینے میں کوئی کرتا ہے کہ کتنا تحفہ لینا ہے میں نے, یا لینے کے بعد کرتا ہے؟ دیکھو ہدی آنا شروع ہوئے, مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں یا کوئی بھی بیٹھا ہوا ہے, گفٹ آ رہا ہے یہاں سے, آ رہا ہے یہاں سے لفافہ. میں کہہ رہا ہوں میں ایک پلاننگ کے تحت پیسے لوں گا, میں لینی نہیں آیا کہیں, ایسا نہ مجھے دینا شروع کر دیں. میں ایک مثال دے رہا ہوں, میرے کوئی بیان کے پیسے نہیں ہوتے. کوئی جیسے مجھے لوگ بلا رہے ہوتے ہیں نا, آپ کو ہم بیان کے لیے بلانے کے کتنے پیسے, ایک روپیہ بھی نہیں ہوتا. بلکہ میں نے کہا کہ اگر ویزا لگ جائے تو میں اپنے خرچے پہ آؤں گا. تو مثال دے رہا ہوں کہ یہ مثال ہی غلط ہے, کوئی دوسری مثال دے دیتا ہوں. دولہا کو گفٹ دیا جاتا ہے نا لفافے, کسی کے ذہن میں آ سکتا ہے مفتی صاحب سمجھا رہے ہیں اصل میں کہنا کیا چاہ رہے ہیں, بس گمان ہو سکتا ہے. دولہا کی مثال دیتا ہوں, دولہا کی. اچھا ہمیں تو دولہا پہ بھی گفٹ نہیں ملے کیونکہ پکڑے جانے کا ڈر تھا ہمیں تو. ہماری تو جب شادی ہوتی ہے ڈر تھا پکڑے پٹ نہ جائیں کہ سالوں, ہماری تو شادیاں بھی اس ٹائپ کی ہوئی ہیں یار, آپ خود اندازہ لگے. آپ اس اسٹائل میں دوسری تیسری کر کے دیکھو, گفٹ تو کی بحث چھوڑو, آپ کہو گے بس اسی چڈی بنیان کے ساتھ میں کسی طرح سے گھر میں پہنچ جاؤں عزت کے ساتھ. تو دولہا کو گفٹ ملتے ہیں, اب دولہا بیٹھا ہوا ہے, ایک نے لفافے میں 1000 روپے لے کر آیا, دوسرا لفافے میں 5000 لے کر آیا. دولہا کہہ رہا ہے یار پلاننگ, ہر کام پلاننگ کے ساتھ اچھا ہوتا ہے. ایکچولی میں اتنے پیسے کہاں رکھوں گا, جیب میری اتنی بڑی ہے نہیں, اور اکاؤنٹ میں بھی جو ہے نا محدود اکاؤنٹ ہے, اس میں 1,00,000 سے زیادہ نہیں ہے نا, ایزی پیسہ اکاؤنٹ ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں, تو ایکچولی میں افورڈ نہیں کر سکتا. اسے کیا کہا جائے گا؟ اللہ کے بندے, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. جب گفٹ تیرے پاس, گفٹ تو جتنا آئے اتنا اچھا, اس کے بعد خرچ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے, اس کو محفوظ کرنے میں پلاننگ ہوتی ہے. اللہ میاں نے کہا اولاد گفٹ ہے, تو جتنا اللہ دے رہا ہے لے لو اولاد, پھر پلاننگ ضرور کرو کہ اس کو کھپانا کہاں ہے, اس کو چور بنانا ہے یا اس کو ڈاکٹر بنانا ہے, اس کو پڑھانا لکھانا ہے. پھر اگر پیسے نہیں ہے تو پھر پیسے کمانے کی بھی پلاننگ کرو. فلیٹ اگر چھوٹا ہے تو اولاد آ رہی ہے تو پلاننگ کرو, بھائی یہی رہنا ہے, تھوڑا سا باہر شہر سے باہر چل کے بڑا گھر لے لو. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ آپ کہیں پیسے نہیں ہے بڑے گھر کے, تو بھائی آبادی سے باہر جاؤ گے تو جس میں ایک شہر میں اتنا فلیٹ مل رہا ہے آپ کو, آبادی سے باہر بڑا گھر مل جائے گا. جب یہ جو ساری دنیا آباد ہوئی ہے, یہ تو اس لیے آباد ہوئی ہے نا کہ بچے بڑھتے چلے گئے, زیادہ تعداد ہو گئی, تو ابا نے کیا کیا, شہر کا گھر بیچ کے ذرا کنارے پہ زیادہ بڑا گھر خرید لیا. تو ملک کو تو اس سے اور فائدہ ہے, آبادی پھیلے گی, ساری آبادی ایک ہی جگہ پہ ٹکے گی نہیں. تو پلاننگ گفٹ لینے کے بعد کی جاتی ہے بھائی, گفٹ لینے میں پلاننگ نہیں ہوتی. تو یہ وہ عقل ہے. تو اسلام دین فطرت ہے جو میں بیان لے کے چلا تھا, بس بات کو بس 5 منٹ میں سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو دیکھو ہر چیز میں جو آرڈر اسلام دے رہا ہے نا, وہ ہے کیا نیچر. سب سے پہلے اسلام کہتے ہیں خدا کی عبادت کرو, یہ نیچرل ہے. جو عبادت نہیں کرتے بے سکونی میں جاتے ہیں. تبھی تو آپ صدیوں پہلے بھی انسان کو دیکھو گے کہ اللہ اگر نہیں ملا تو پتھر کے سامنے جھکنا شروع کر دیا اس نے. یہ کیوں تھا؟ اس کی نیچر کی آواز تھی, بھائی کوئی خدا ہے جس کے سامنے میں نے جھک کے اپنی راز و نیاز کی باتیں کرنی ہے, اس کے ساتھ اپنا غم میں نے شیئر کرنا ہے. ان کو اچھا اوریجنل خدا نہیں ملا, پیغمبروں کی تعلیمات نہیں پہنچی, تو کسی نے چوہے کو خدا بنا لیا, کسی نے بندر کو بنا لیا, کسی نے بت کو بنا لیا, کسی نے سورج کو بنا لیا, کسی نے چاند کو بنا لیا, یہ اس کی علامت تھی کہ انسان کو راز و نیاز کی باتیں کرنے کے لیے گاڈ چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ نہیں ملے گا کہاں جائے گا؟ تبھی دنیا میں ایتھیسٹ لوگ سب سے زیادہ خودکشی کرتے ہیں. اسلام نے آ کے بتا دیا بھائی یہ جھوٹے خدا ہیں، اوریجنل کون ہے؟ ایک ہے، اس کے علاوہ کسی اور کے سامنے سر بولو مت جھکانا. وہ سب کچھ کر سکتا ہے، باقی سب بنے ہوئے ہیں. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر، نہ سورج کو سجدہ کرو نہ چاند کو. واسجدوا للہ الذی خلقہن، اس کو کرو جس نے ان دونوں کو پیدا کیا ہے. تو یہ کس نے ہمیں نیچر پہ لے آیا؟ اسلام. پھر عبادت کا اسٹائل کیا ہونا چاہیے؟ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں اس سے بھی عاجز ہیں، کیونکہ وہ خود بتا رہے ہیں. تو کسی نے کہا یوں کرنا ہے، کسی نے کہا یوں کرنا ہے، کسی نے کہا لٹھ نکال لی یہاں سے، آدھا سر منڈانا ہے آدھا باقی رکھنا ہے، کسی نے کہا کپڑے پہننے کا تکلف کرو گے تو خدا ناراض ہو جائے گا، بغیر کپڑوں کے گھومو آپ. دنیا میں مختلف مذہبوں میں نا مذہبوں میں مذہبی رہنماؤں کے الگ الگ اسٹائل ہیں. کسی نے کیا، کسی نے کہا کرالنگ کر کے عبادت خانے میں جاؤ گے تو ثواب ملے گا، وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کرالنگ کر کے جا رہا ہے. ٹانگیں کیوں پیدا کی بھائی اللہ نے چلنے کے لیے؟ وہ کہہ رہا نہیں، اللہ خوش ہوتا ہے ٹینشنوں میں اپنے آپ کو ڈال. ایک صحابی نبی کے پاس آئے، انہوں نے کہا میں اللہ کو خوش کرنے کے لیے کبھی گوشت نہیں کھاؤں گا، میں سبزیوں پہ گزارا کروں گا. ایک نے کہا کہ میں ہمیشہ بھوکا رہوں گا، بس بقدر روز کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ، پھر کھاؤں گا پھر اگلے دن روزہ، روزوں پہ روزے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ میں تم میں اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہوں، میں تو روزہ بھی رکھتا ہوں کھاتا بھی ہوں، میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں. کیا مطلب؟ اپنی طرف سے آپ خدا کو خوش کرنے کی کوشش کرو گے تو سیدھے راستے پہ چلنے کے بجائے سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ. دیکھو پادریوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ بھائی ہم شادی بیاہ سے دور رہیں گے، کیونکہ نکاح جو ہے ظاہر ہے آپ کی خواہش پوری کرنے کا ذریعہ ہے، تو ہم اپنی تمام خواہشات کا گلا گھوٹیں گے جس سے اللہ کیا ہو جائے گا خوش. یہ انہوں نے انجیل کی تعلیمات پہ عمل نہیں کیا بلکہ اپنی عقل کا غلط استعمال، اس عقل کا غلط استعمال کیا، اس کے کیا سائڈ ایفیکٹ سامنے آئے، نسلیں ختم ہونا شروع ہو گئیں، پھر فحاشی پھیلنا شروع ہو گئی. تو یہ سب چیزیں اپنی بنائی ہوئی ہیں انسان کی. یہاں بھی اسلام دین فطرت ہے، اس نے کہا نا 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 نا، اللہ تم سے لذتیں نہیں چھڑواتا، کیونکہ اگر اللہ نے لذتیں چھڑوانی ہوتی تو یہ تو ہم نے پیدا انسانوں کے لیے کی ہیں، اور ہم تمہیں نعمت کے طور پہ بیان کرتے ہیں. اس انار کو دیکھو کیسے ہم نے پیدا کیا، اس کو کیسا بنایا ہم نے. کھاتے ہو شکر کیوں ادا نہیں کرتے؟ تو کھاؤ گے تو شکر ادا کرو گے نا. دودھ کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، گوشت کی مثال دی اللہ تعالیٰ نے، ساری مزے مزے کی چیزوں کی اللہ نے قرآن میں مثالیں دی ہیں اور بتایا ہے کہ میں نے تمہارے لیے پیدا کی ہیں. تو اوائڈ کرنے کا حکم اگر ہوتا تو اللہ ہمارے لیے پیدا کیوں کرتا؟ لیکن ایک لمٹ اللہ نے کہا دیکھو کھانے پینے کی دو طرح کی، دیر آر ٹو ٹائپس آف خوراک، خوراک کی کتنی قسمیں ہیں؟ دو قسمیں. کچھ خوراکیں ایسی ہیں جو انسانوں پہ سوٹ نہیں کرتی، وہ درندوں کے لیے بنائی گئی ہیں. انسان مہذب ہے تو حلال اور پاکیزہ چیزیں کھائے گا، گندی اور ناپاک چیزیں نہیں کھا سکتا. تبھی جتنے حشرات الارض وہ سارے حرام کر دیے، آپ کیڑے نہیں کھا سکتے پروٹین کے لیے. اب دیکھو غیر مسلم کیا ہے، وہ خوراک میں بس یہ دیکھے گا یہ اس میں پروٹین ہے یا نہیں ہے، طاقت ہے یا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر کی فیلڈ ہے. مذہب اس سے آگے جائے گا، مذہب کہے گا نا نا نا، یہ انسانوں کے کھانے کی ہے. یا اگر چھپکلی آپ کو وہ کھانے کے بعد صحت اچھی ہو رہی ہے تو کیا حلال ہو جائے گی چھپکلی؟ کیوں بھائی؟ انسانوں کے کھانے کی چیز، یہ خبائث میں، یہ مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں میں شامل ہے. تو اللہ میاں نے کہا جو مردار جانور ہو جائے، جو جانور اپنی موت مر جائے، اس کو مت کھانا. جب تک ذبح ہو کے اس کا بلڈ اس کے باڈی سے نہیں نکالا جاتا اس وقت تک وہ انسانوں کے کھانے کی، وہ کتے بلی کھائیں گے انسان بولو نا نہیں کھائیں گے. آپ سب کچھ ہی کھا جاؤ یار. پھر اللہ میاں نے کہا دو قسم کے، ایک ہے اکل الحرام اور ایک ہے الاکل الحرام. مولوی صاحب بیٹھے اس کا مطلب سمجھتے ہیں. اسلام نے دو پابندیاں لگائی ہیں، ڈاکٹر ایک پابندی لگاتا ہے صحت کے لیے نقصان دیا تو نہیں کھاؤ، فائدہ مند ہے تو کھا جاؤ. تو کیا کہ لڈو وہ کھائے جس کی شوگر، جس کو شوگر نہیں ہے، جس کو شوگر ہے وہ لڈو نہ کھائے وہ. لیکن اللہ میاں نے ایسی پابندیاں لگائی ہیں جو انسان کو انسان بنانے کے لیے ضروری ہے. اللہ میاں نے کیا کہا، دیکھو جانور جب تم کھاؤ گے تو اکل الحرام اور الاکل الحرام کا کیا مطلب، ایک چیز ایسی ہے جو ہے ہی حرام، وہ کبھی حلال ہو نہیں سکتی، جیسے سور کا گوشت ہے، کتے کا گوشت ہے، چھپکلیاں، چوہے. یہ آپ اگر लोगों को कुरान पढ़ाकर जो उनसे उजरत ले रहे हो ना, उससे भी अगर चूहा खरीद के खाओ तो हलाल बोलो, क्योंकि है ही गंदा पलीद, खिंजीर है ही पलीद, नहीं खा सकते आप, इंसानों के खाने की चीज नहीं है ये। दूसरी चीज है, कुछ चीजें अपनी जात के एतबार से हलाल हैं, लेकिन तुम जिन पैसों से खरीद के खा रहे हो, उन पैसों से जब खरीद के खाओगे तो हलाल भी क्या बन जाएगी? हराम। मिसाल के तौर पर आपके अब्बा का इंतकाल हो गया और बहनों की जायदाद आप पी गए, बहन का प्लॉट था वो आपने बेच के पैसे रख लिए, अब उन पैसों से आप मदीना की खजूरें खरीद के खा रहे हो, जैसे कि लोग खा रहे होते हैं। क्योंकि मैंने अक्सर देखा है हज पे जो जा रहा होता है ना, मुझे लगा होता है अब्बा का नया नया इंतकाल हुआ है और पूरी विरासत इसको मिली है, तभी बड़े मजे से हज करने जा रहा है। हर हाजी से बदगुमान ना हो, लेकिन मेरे पास रिपोर्टें हैं, एक साहब मस्जिद के चंदे से पैसे खा के उमरा करने चले गए। अजीब आ रहा है यार, तू उमरा करने तो जा रहा है, कम से कम चंदा खा के ना जाए यार। तो अब वो खजूर खरीद के खा रहा है, जमजम खरीद के खा रहा है, तो ये क्या है? ये अल अकलुल हराम है। क्या मतलब? ये अकल ही हराम है, चीज हराम नहीं है। इसका खाना क्या है? ये हराम है। क्यों? आप नजायज पैसों से खा रहे हो। ये दो पाबंदियां किसने लगाई हैं? इस्लाम ने। दुनिया में देखो, हुकूमत जब कानून बनाती है तो लीगल और इलीगल होता है, हलाल और हराम नहीं होता। हलाल और हराम किसका टॉपिक है? मजहब का। अगर आप मजहब से दस्तबरदार हो जाते हो तो हलाल हराम की सारी बहस आपकी एक तरफ, फिर आप कुत्ते खाओ, फिर आप चोरी के पैसों से जमजम पियो। कानून पकड़ लेगा तो ठुबाई हो जाएगी, नहीं पकड़ेगा तो वो क्या हो जाएगा? सब जुजे बदल बन जाएगा। तो आपको इंसान बनने के लिए, फितरत पे चलने के लिए इस्लाम के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। इसलिए मेरे भाई, इस्लाम का जो पूरा निजाम है, ऑल्टरनेट जो इस्लाम ने पेश किया है दुनिया के निजाम से हटके, उसी में हमारे लिए निजात है। और आप इन जिन मुल्कों में रहते हो, इनका बहुत बड़ा एहसान है कि ये इस्लाम पे चलने में रुकावट नहीं है आपके लिए। मुझे पता चला यहाँ स्कूलों में मुसलमान बच्चों को नमाज का टाइम दिया जाता है, हमारे मुल्क में नहीं दिया जाता। इस्लामी कंट्री में बच्चे बता रहे होते हैं हमारी क्लास टाइम है, नमाज का टाइम है, टीचर हमें नमाज पढ़ने नहीं देते। दफ्तरों में हमारे यहां नहीं, यहां दिया जा रहा है दफ्तरों में नमाज का टाइम, और बच्चों को यहां मुसलमान बच्चों को हलाल, अगर वो खाना चाहे तो हलाल उनको मुयसर है। तो कितनी आसानी है भाई, हमारे यहां भी हलाल है, लेकिन हमारे यहां जो हलाल है ना, वो अल अकलुल हलाल मुश्किल मिलेगी आपको। होगा हलाल मगर पता नहीं किन पैसों से होगा। वही मिसाल है ना, मिसाल देता हूं, एक आदमी ने मुर्गी चोरी की, उल्टी तरफ से जबा कर रहा था। किसने कहा भाई इधर से जबा करने से हराम हो जाती है? उसने कहा पहले कौन सा हलाल थी वो। मैं ये कई दफा चुटकुला सुनाया तो किसी ने इस पे एतराज किया, मुफ्ती साहब फर्क है, चोरी की मुर्गी अगर जबा करके खाएगा तो चोरी का गुनाह तो मिलेगा, लेकिन गोश्त तो हलाल हो, वो मुर्गी तो, और उल्टी तरफ से जबा करेगा तो चोरी भी और उल्टा हराम भी। तो मैं ये उसको तो मैंने जवाब नहीं दिया, आपको मैं जवाब दे रहा हूँ। इतनी सेंस अल्हम्दुलिल्लाह हम में भी है। तो चुटकले को चुटकला ही समझा करो, उसकी ज्यादा तहकीक में रिपोर्टों में जाके इतने कमेंट मत किया करो। हमें पता है यहां से और यहां से चोरी की मुर्गी में भी फर्क है, लेकिन समझाने के लिए तो बोलने दो यार। तो इतने बड़े बड़े फंटर पाकिस्तान में पड़े हुए हैं ना, पूरा उसका एनालाइज करना शुरू कर देते हैं, तज्जिया करना शुरू कर देते हैं और फिर हमें समझाना शुरू कर देते हैं। आपको ये फर्क नहीं पता, आप मुफ्ती हो, आप आलिम हो, आपने भाई हमें बच्चे को पता है तो हमें भी इंशाल्लाह उम्मीद है। हम नहीं कह रहे बहुत बड़े कोई फंटर है, हम इतना तो पता ही होता है सबको, लेकिन है तो फिर भी हराम ना, चाहे यहां से काटो या बताना, ये मकसद है। गुनाह से फिर थोड़ी बचोगे, क्योंकि मुर्गी चोरी की है तो चोरी का तो आप जमजम भी पियोगे, वो भी क्या होगा? हराम होगा आपके लिए। तो इसलिए मेरे भाई, अब मैंने जो आयत पढ़ी थी, बस मैं दो मिनट में समेटता हूँ। फितरत अल्लाह अल्लज़ी फतर अन्नास अलैहा, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले यह दावा किया कि इस्लाम वो फितरत है जिस पे मैंने लोगों को पैदा किया है। तो अब आपको पता चल गया कि जो इस्लाम से दूर होंगे कभी भी सुकून हासिल नहीं कर सकते, ना दुनिया में, आखिरत में तो वैसे ही बेड़ा गर्क, दुनिया में भी नहीं मिलेगा। और जो इस्लाम पे चल रहे हैं, सुकून सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ उनके हिस्से में आएगा। क्यों? इसलिए कि ऑर्गेनिक है, फितरत है। नेचर क्या होती है? ऑर्गेनिक में नेचर है। तो बिल्कुल ऐसे ही जैसे जो खजूर और जैतून और ऊंटनी का दूध पी रहा है, उसकी चार बीवियां बुढ़ापे में भी आके अपने अपने बूढ़े शौहर के खिलाफ केस कर रही है, और जो डब्बे पे आ गया तो मेरी चार चार शादियां और जल्दी शादियों की बातें सुन के सिवाय डिप्रेशन में जाने के उसको कुछ भी हासिल। वो कहेगा ये मौलवी साहब इस तरह की बातें करते क्यों? असल में आप खा जो रहे हो ना, उसमें इस तरह की बातें वाकई समझ में नहीं आती। पिज्जा बर्गर से ये बातें समझ में नहीं आती। खैर ये तो एक चुटकुला था। तो अल्लाह से दुआ करता हूं अल्लाह हमें दीन फितरत पे ले आए। तो दीन फितरत पे आने के लिए अपने आप को मुकम्मल इस्लाम के हवाले कर दो। इस्लाम के हवाले करने में सबसे पहले अकीदा तौहीद है। सिर्फ या अल्लाह मदद, मदद सिर्फ किससे मांगनी है? अंतुमुल फुकरा इल्लल्लाह, सारे अल्लाह के मोहताज हैं, चाहे पैगंबर हो फरिश्ते हो, सब मोहताजी में अल्लाह के मोहताज। नंबर दो उसके बाद है नमाज। जितने यहां बैठे हुए हैं और जो भी नेट पे भी सुनेंगे, अजम करें अल्लाह ने हमें इबादत का हुक्म दिया, भाई थोड़ी टेंशन उठा लो और 5 टाइम मस्जिद में जमात से नमाज पढ़ना शुरू कर दो। देखो माहिरीन कहते हैं 21 दिन तक जो काम कंटिन्यू किया जाता है उसकी आदत पड़ जाती है। अभी एक साहब आए मेरे पास, बड़े भारी भरकम से थे माशाल्लाह, तो उनकी खुराक बहुत थी। मुझे कह रहे हैं मुझसे खाना नहीं छोड़ा जाता, मैं पतला होना जापानियों को देख के तो शर्मिंदा होते होंगे ना, कितने बारीक बारीक कैसे भाग रहे होते हैं ना जापानीज। अगर ये भी इस तरह हमारे होते तो कैसे चल सकते ये तरक्की करते? ये तो पुल इन्होंने 2 साल में बनाए, 18 साल में भी नहीं बनता। मजदूर को बुलाते वो कह रहे आ रहा हूं, उससे उठाई नहीं है। पहले एक क्रेन उसको उठाने के लिए जाती, फिर एक दूसरी क्रेन पुल को उठाती। तो पतला दुबला जो होगा ना, जो पतले से मेरी मुराद है जो फैट कम हो, बाकी बाय नेचर नेचुरली बाज़ लोग का जिस्म भारी होता है, वो तो कुदरत की तरफ से, हमने बड़े बड़े उलमा देखे हैं बहुत कम खाते हैं लेकिन जिस्म भारी है उनका, वो फिर भी फुर्तीले होते हैं। एक है कि ज्यादा खाना, ये इस्लाम में पसंदीदा नहीं है बिल्कुल भी। तो मुझे कहने लगे कि भाई मैं चाहता हूं कि कैसे मैं पतला हो जाऊं। मैंने कहा आप खुराक खाना पीना छोड़ दें। उन्होंने कहा ये नहीं छूटेगा, ये नहीं हो सकता। तो मैंने उनसे कहा आप 3 दिन रोजा रखें, खुराक पे कंट्रोल करें। 3 दिन में ना बड़ी टेंशन से निकल आता है इंसान, ये ऐसी चीज है। आप 3 दिन ना खाएं ना तो 3 दिन के बाद, 3 दिन तक बहुत टेंशन होगी, तो 3 दिन के बाद वो टेंशन आपकी 50% बल्कि 75% कम हो जाएगी। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? 75% कम हो जाएगी 3 दिन के बाद, आधी होने लगेगा बॉडी। देखो हम जब रोजा रखते हैं ना रमजान में, पहला रोजा, दूसरा, तीसरा मुश्किल, उसके बाद पता ही नहीं चलता, ईद के चांद का ऐलान हो जाता है। पहले में थोड़ी मुश्किल होती है। तो 3 दिन, फिर मैंने कहा जब 21 दिन आप खुराक पे कंट्रोल करोगे, रोटी चावल और ये आलू वालू छोड़ दोगे, हर एक के लिए छोड़ने का हुक्म नहीं है रोटी चावल, जो क्योंकि लोग कहते हैं आप तो गंदम के बड़े फजाइल बताते हो, जो गोल हो चुके हैं उनकी बात कर रहा हूं मैं, तो जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर हो चुकी है। तो मैं उनसे कहता हूं भाई, डॉक्टर कहते हैं, हम क्या कहते हैं, माहिरीन कहते हैं 21 दिन तक आप खुराक पे कंट्रोल कर लो, 3 दिन में तो बड़ी टेंशन खत्म हो जाएगी। 21 दिन के बाद ये होगा कि आप यूज टू हो जाओगे, फिर आपसे खाया ही नहीं फोड़ा ही नहीं जाएगा आपसे, जैसे फोड़ रहे हो ना, फिर आपको लगेगा यार मैं, यानी आदत हो जाएगी आप। और 40 दिन तो इनफ है, एंड है। तो आप भी जमात की नमाज आप 3 दिन तकबीर उला से पढ़े, तो 50% टेंशन जो नमाज ना पढ़ने से जो आपको टेंशन हो रही थी ना आदत, वो इंशाल्लाह 3 दिन में क्या हो जाएगी, काफी हद तक खत्म। और फिर 21 दिन पाबंदी और 40 दिन पाबंदी कर ली ना तकबीर उला की, जिंदगी भर इंशाल्लाह आपको नमाज की आदत। और इसके लिए आसान तरीका तबलीग में निकल लो, या सहरोजे की जमात लगा लो यार, 3 दिन तकबीर उला का कितना आसान हो जाएगा। और फिर चिल्ला लगा लो और 4 महीने में बेड़ा पार हो जाएगा इंशाल्लाह, ठीक है ना। बहुत तो कुछ करना पड़ेगा मेरे भाई, जिस माहौल में इंसान गुमराह होता है उसी माहौल में इंसान सुधरता नहीं है। सुधरने के लिए एनवायरमेंट और माहौल थोड़ा सा चेंज करना पड़ता है। तो अल्लाह ताला मुझे भी सीधे रास्ते पे चलने की तौफीक दे और आपको भी, और नमाज हो गई और एक दो बातें और जितने यंग जनरेशन यहां बैठी है भाई, नशे के करीब कभी भी भूल के भी मत जाना। यहाँ शराब इलीगल है, सॉरी शराब यहाँ लीगल है, अल्लाह के कानून में इलीगल है। अल्लाह ने शराबी के बारे में हुक्म दिया कि 80 कोड़े मारे जाएं इसको, गवर्नमेंट का काम है आप खुद ना किसी को पीटना शुरू कर दें। तो आजकल तो इस्लामी हुकूमतों में कोड़े नहीं लग रहे, तो यहां आप कहां से तवक्को रखेंगे? तो आप बस अल्लाह का खौफ ही आपको बचा सकता है। अल्लाह को बहुत सख्त नफरत है शराब पीने से, तो अपने आप को इन एक्टिविटीज से बचाओ। और मेरे भाई मैं तो डंके की चोट पे कहता हूं, लोग नाराज होते हैं, गर्लफ्रेंड की तरफ मत जाओ। यहां का कल्चर है गर्लफ्रेंड, कोई लड़की आपके करीब आती है आप बोलो भाई नहीं, हमारे मजहब में खुदा खुदा के कानून में क्या है ये हराम। आप 4 शादियां करो यार, मत रुको आप किसी से, डरो मत इसमें, अल्लाह ने आपके लिए लीगल किया है। और वैसे भी मैं यहां बयान करके आया हूं ना, बेचारे जापान के लोग तो चाह रहे हैं कि नस्ल बढ़े यहां पे, और पैसे मिल रहे हैं बच्चा पैदा करने पर। वो तो कह रहे हैं भले यहां का नेशनल कोई भी हो, یہ ان کی خوبی ہے کہ ان میں قوم یعنی اس طرح کی قوم پرستی کے دوسرے کو نیچا کرنا یہ والی قوم پرستی ان لوگوں میں نہیں ہے, نہ مذہب کے معاملے میں یہ متشدد ہیں. تو یہ آپ کو انہوں نے سہولت دی ہوئی ہے, تو آپ نکاح کی طرف جاؤ میرے بھائی. اچھا یہاں ایک مزید قانون پتا چلا, دوسری شادی انلیگل ہے, لیکن اگر کچھ ایسے کیسز آئے ہیں کورٹ میں کہ دوسری وائف نے اگر کہہ دیا نا پہلی اور دوسری وائف نے کہ ہم راضی ہیں, یعنی یہاں خواتین تو نہیں بیان سن رہی, شکر ہے یار, اسے نہیں بولیں گے ہم کیا آخر میں آ کے سارا بیان کی ایسی کی تیسی. شروع میں اتنا اچھا چل رہا تھا مصطفیٰ کا بیان, آخر میں پروگرام تو بڑھ گیا, خواتین کہیں پروگرام کی ایسی کی تیسی کر دی. تو میں نے جہاں تک جو واقعات یہاں پر آئے ہیں نا, اگر دونوں وائف کورٹ میں جا کے بیان دے دیں کہ ہمیں اعتراض نہیں ہے تو پھر کورٹ اس کو ایکسپٹ کر لیتی ہے. تو آپ نہ کریں شادی, یہ آپ کا پرسنل مسئلہ ہے, لیکن زنا کے قریب مت جائیں. زنا سے کروڑ ہا گنا بہتر کیا ہے؟ نکاح میرے بھائی. تو اگر کسی کو عیاشی کرنے کی ٹھڑک ہی ہے اس کے اندر, نکاح ٹھڑک کے لیے نہیں ہے, نکاح اولاد کے لیے, عورتوں کو سہارا دینے کے لیے, لیکن اگر ٹھڑک ہی کرنی ہے بھائی, عیاشی کرنی ہے, تو پھر بھائی زنا کے قریب مت جاؤ. کس کے پاس جاؤ؟ نکاح کرو, عورت کو بیوی بنا کے عزت کے ساتھ گھر میں لے کر آؤ. تو زنا سے بچیں, شراب سے بچیں, نماز کو پابندی سے قائم کریں, عقیدہ توحید پر قائم رہیں, ماحول کو تبدیل کرنے کے لیے کوشش کیا کریں, کبھی کبھار تبلیغ میں وقت لگا لیا کریں, اپنے گھروں کی خواتین کو محبت کے ساتھ پردہ سکھائیں, ان کو بتائیں بھائی یہ ان کا کوئی مذہب نہیں ہے, بیگم یہ آزاد گھومتی ہیں, ان کے ہاں کپڑوں کی ویلیو نہیں ہے, تم ان کو دیکھ کے خراب مت ہو, ہم مسلمان ہیں, ہم کلمہ گو ہیں, اللہ نے عورت کو حجاب کا حکم دیا ہے, ہمیں تو ان کو حجاب سکھانا ہے, نہ کہ ہم نے ان جیسا بن جانا ہے. اور پھر اپنی بیگم کو بتائیں اگر ہم ان جیسے بن گئے تو پھر دیکھ لو ہماری اولادوں کا فیوچر وہی ہوگا جو ان کا ہے, یہی بچے کل ہمیں نکال دیں گے گھر سے, 18 سال کے ہو کے ہمیں ٹاٹا کر کے چلے جائیں گے. لیکن لبرل انٹیاں جو ہے نا وہ کہتی چلے جائے کیا ہو جائے گا اس سے, جب ہوگا نا وہی ہوا تھا جو اس کو ہوا ہے, جب ہوگا تو پھر یہ باتیں نہیں کرو گی, ہوگی یہ کیا ہے, یہ مجھے پھر رینٹ پہ بندہ منگواؤ گی تنہائی دور کرنے کے لیے, کوئی خاتون منگواؤ گی رینٹ پہ گپ شپ لگانے کے لیے, ایسا ہی ہوتا ہے نا. تو اس لیے اسلام دین فطرت ہے, دنیا کا بھی سکون اور آخرت کا بھی. اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ رب العالمین, والعاقبۃ للمتقین, والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار, صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.